बोलिए वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान स्वामी की, बोलिए गुरु आचार्य विद्यासागर जी महाराज की, बोलिए परम पूज क्षमा सागर जी महाराज की, बोलिए परम पूज भव्य सागर जी महाराज की, बोलिए आचार्य संघ की। बिगड़ी बात बना दो वी नैया पार लगा दो वी, बिगड़ी बात बना दो वी नैया पार लगा दो वी, युग युग से भटक रहा, युग युग से मैं भटक रहा, अब तो राह दिखा दो वी, बिगड़ी बात बना दो वी नैया पार लगा दो वी, घबराया है घोर अंधेरा छाया है, मन पंछी घबराया है, मोह माया के चक्कर में ये मूरख भरमाया है, अब तो ज्ञान पुंज से पूर करो तम को दूर भगा दो वी, बिगड़ी बात बना दो वी नैया पार लगा दो वी, हे वी महावीर कितना बड़ा एहसान किया, तुमने हमको ज्ञान दिया कितना बड़ा एहसान किया, फिर भी हमने पग पग पर जीवन का अपमान किया, फिर भी हमने पग पग पर जीवन का अपमान किया, जैसे हैं हम तेरे हैं भले बुरे प्रभु तेरे हैं, गुण अवगुण बिसरा दो बना दो वी नैया पार लगा दो वी, युग युग से मैं भटक रहा, युग युग से मैं भटक रहा, अब तो राह दिखा दो वी, बिगड़ी बात बना दो वी बिगड़ी बात बना दो वी। बोलिए गुरु आचार्य विद्यासागर जी महाराज की, बोलिए मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज की। बोलिए मुनि श्री भव्य सागर जी महाराज की, बोलिए आचार्य संघ की।
इनका प्रश्न यह है कि मेरु और सुमेरु पर्वत एक ही हैं क्या? तो भैया एक ही हैं, ये इस प्रश्न का आंसर है। पांच मेरु कहे गए हैं, उनके अलग अलग नाम कहे गए हैं। मंदर भी कहते हैं उसको मेरु सुमेरु, तो ये सब सिनोनिम्स हैं, एकार्थवाची नाम है। कृपया कोई स्वलिखित भजन या कविता सुना दीजिएगा। ये तो मैंने पहले ही कहा था कि अभी प्रश्न शुरू नहीं हुए और ये कह रहे हैं, निवेदन है, ये प्रश्न नहीं है। ये भी ये तो प्रश्न ही है, स्वर्ग से मरकर कोई जीव नरक जा सकता है? नहीं, वन वे ट्रैफिक है। स्वर्ग से कोई मर के नरक नहीं जा सकता, नरक से मर के स्वर्ग नहीं जा सकता, स्वर्ग से मर के स्वर्ग नहीं जा सकता, नरक से मर के नरक नहीं जा सकता, वन वे। यहां पर ऐसा ही नियम है, स्वर्ग से मर करके मनुष्य तिरंच बनना पड़ेगा, फिर दूसरी बार जाना चाहो तो स्वर्ग चले जाओ, जाना चाहो तो नरक चले जाओ। इसी तरह नरक से मर करके पहले मनुष्य तिरंच बनना पड़ेगा, फिर उसके बाद नरक चले जाओ चाहे स्वर्ग चले जाओ। पर डायरेक्ट जो है ऐसा कोई उपाय नहीं है। आप क्या सोचते हैं, ऐसा कुछ करने का मन है क्या? लेकिन अभी तक ऐसा कहीं भी नहीं हुआ कि कोई स्वर्ग से मरे, इतनी ऊंचाई पर पहुंच करके और इतने अधिक खराब परिणाम नहीं होते भैया। मनुष्य तिरंच में तो पहुंच सकता है, नरक में नहीं पहुंच सकता देव। इसी तरह से नरक से और इतने संक्लेश पूर्वक जीने वाला व्यक्ति सहसा स्वर्ग की आयु देव आयु का बंद नहीं कर सकता, उसको मनुष्य तिरंच की आयु का ही बंद हो। ये इस प्रश्न का आंसर, प्रश्न खत्म। बहुत स्लो प्रोसीजर है। दम का नहीं भरोसा जी, कर लो चलने का सामान। ये जम ऊपर बैठता जी, करता मान गुमान। ये जम से डरता नहीं जी, ये ही जम के जम से काम। ये अंतर समझ में नहीं आया। एक अंतरा है ये, यह जम ऊपर बैठता जी, करता मान गुमान। यह जम से डरता नहीं जी, ये ही जम से काम। अब भैया ये किसी भजन का एक अंतरा है। अब वो पूरा भजन जब अपन देखें और उसका मिलान करें।
शुरू की कड़ी बता भैया।
दम का नहीं भरोसा जी, कर लो चलने का सामान। उनकी शुरू की कड़ी है ना, दम का नहीं भरोसा जी, कर लो चलने का सामान। ऐसा
दम का नहीं भरोसा,
तो इसका मतलब है नीचे जो है वो गुमान शब्द है, तो कुछ इसी तरह का आना चाहिए। काम शब्द की जगह कान देना मतलब सुनना ठीक से, तो ऐसा कुछ कान शब्द भी आ सकता है।
माने अपना आत्मा का कल्याण कर लो।
हाँ,
दम का नहीं भरोसा
वो तो है ही, नीचे की पंक्ति नहीं बैठ रही। महाराज जी का विचार यह है कि मैं दही और छाछ के बारे में बता दूं। तो भैया साइंस के हिसाब से दही बैक्टीरिया से जमता है, स्ट्रेप्टोकोकस स्ट्रेप्टोफोकस और लैक्टोबैसिलस, ये तीन तरह के बैक्टीरिया होते हैं जो कि दही जमने में माध्यम बनते हैं, इनके माध्यम से ही जमता है। और ये बैक्टीरिया क्या चीज है, इस पे अपने को विचार करना चाहिए। इस पे बहुत रिसर्च पेपर भी लिखे गए हैं, साइंस वालों ने ही लिखे हैं, और उन्होंने जैन धर्म से इसको कंपेयर करके यही कहा है कि बैक्टीरिया एक इंद्रिय जीव है। तो एक इंद्रिय जीव तो सब जगह हैं, जल में भी हैं, इसीलिए तो अपन उनको प्रासुक करते हैं और प्रासुक करके लेते हैं ताकि जीव हिंसा से बच सके। प्रासुक करने की प्रक्रिया में जीव हिंसा नहीं होती, प्रासुक करने की प्रक्रिया अपन सोचते हैं कि गर्म कर लेने का नाम प्रासुक है, इतना ही नहीं है। प्रासुक करने के माने हैं एक निश्चित समय के लिए किसी प्रक्रिया विशेष के द्वारा उस वस्तु को जीवों के संचार से रहित कर देना। अगर हमने पानी को बॉइलिंग पॉइंट तक उबाल दिया है, बॉइल कर दिया है, 100 डिग्री तक पानी को उबाल दिया है, तो उस पानी में 24 घंटे तक जीवों का संचार नहीं होगा, यह कहलाता है प्रासुक। अगर कम गर्म किया है तो 12 घंटे की मर्यादा हो गई, 12 घंटे के बाद उसमें जीवों का संचार होगा। अगर और कम उबाला है तो 6 घंटे में ही उसमें जीवों का संचार होने लगेगा। तो इस तरह से हम किसी प्रक्रिया विशेष के द्वारा जब एक निश्चित समय के लिए उस वस्तु को जो खाने पीने की है जीवों के संचार से रहित कर देते हैं, वो कहलाती प्रासुक करना। अब दही अगर बैक्टीरिया से जमा है तो फिर वो एक इंद्रिय जीव तो उसमें है, उस एक इंद्रिय जीव से बचने के लिए क्या करें, तो दही को बिलो देते हैं या दही में नमक और कोई मसाला डाल देते हैं, तो वो दही जो है वो हमारे खाने योग्य, या उसको जरा चम्मच से हिला दिया वो पर्याप्त है उसके लिए। और वैसे भी जो बैक्टीरिया हैं वो निरंतर अपना जन्म मरण करते रहते हैं, बस इतना ही है कि हम उसे किसी प्रक्रिया विशेष से उसकी उत्पत्ति को बंद कर देते हैं, अब उसमें जीव राशि उत्पन्न नहीं होती। तो इस तरह से देखा जाए तो दही अभक्ष नहीं है, दही खाने योग्य है। पर एक मर्यादा हमारे यहाँ हर चीज की निश्चित की है, उस मर्यादा के बाद कोई भी चीज जो खाने योग्य है वो भी नहीं खाने योग्य हो जाती है। तो दही के बारे में भी यही है कि दही एक निश्चित मर्यादा के बाद खाने योग्य नहीं होता, और दही से जमाया गया दही भी खाने योग्य नहीं होता। पुराना दही नए दही दूध में डाल करके अगर जमाया है तो वो दही मर्यादा का नहीं कहलाएगा। मर्यादा का दही वो कहलाता जिसमें हम किसी एक विशेष उपकरण के द्वारा उसको जमाते हैं, या तो नारियल के ऊपर के छिलके से जमाते हैं, या बादाम के छिलके से जमाते हैं, या चांदी के सिक्के से जमाते हैं, या कि संगमरमर के टुकड़े से जमाते हैं। ये चार प्रक्रियाएं उसके जमाने की हैं। इन चारों में से कोई भी चीज़ पहले दही में डाल दी जाती है और फिर वो घंटे दो घंटे दही में पड़ी रहे, उसको निकाल के धो लीजिए, पोंछ लीजिए, सुखा लीजिए, रख लीजिए, मशीन हो गई आपके पास अब दही जमाने की। हाँ, उसको जो है दूध में डाल देते हैं। संगमरमर के टुकड़े के साथ ऐसा है कि उसको तो 5 मिनट 10 मिनट घुमाने के बाद बाहर निकाल देना चाहिए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से बनना शुरू होती, रिएक्शन होता है, एसिड बनता है, तो फिर वो नुकसानदायक है। चांदी के सिक्के में भी थोड़ा सा पॉइजनिंग हो जाता है, अगर ज़्यादा एसिड बन जाता है, खट्टापन आता है दही में, तो फिर ज़्यादा देर तक नहीं डालना चाहिए। सबसे सुरक्षित है अगर तो नारियल के ऊपर के छिलका, जिसको अपन नेरेटी बोलते हैं, और दूसरी चीज़ है बादाम, पौष्टिक भी है, और बादाम का छिलका भी उपयोग कर सकते, पूरी बादाम भी उसमें डाली जा सकती है। तो इस तरह से दही जमाने की प्रक्रिया, और ऐसा जमा हुआ दही भी 24 घंटे तक ही खाने योग्य है, उसके बाद खाने योग्य नहीं। अब 24 घंटे से पहले उस दही में गर्म पानी मिलाकर उसे बिलो लेते हैं और उसमें से घी निकाल लेते हैं और फिर उस छाछ का उपयोग करते हैं, तो वो छाछ भी 24 घंटे तक उपयोग की जा सकती जिसमें गर्म पानी मिला करके उसको बिलो लिया गया। दही की मर्यादा तो पूरी हो गई लेकिन छाछ की मर्यादा अब शुरू हो गई, गर्म पानी डाल के किया और वो जो घी निकला है उसको 48 मिनट के भीतर अगर जमा करके रख लिया, उबाल के रख लिया जाता है गर्म करके, तो वो अष्टप्रहरी कहलाता है, इस तरह खाने योग्य होता। लेकिन 24 घंटे की ज्यादा मर्यादा वाला दही भी खाने योग्य नहीं, उससे बना हुआ घी भी त्यागी व्रती नहीं खाते। सामान्य जीव तो खा लेते हैं पर त्यागी व्रती जो है वो इसका विवेक रखते हैं। इतना ही है। अब रही बात ये कि बैक्टीरिया के बारे में क्या है, तो प्रक्रिया क्या होती है, ज़्यादा कुछ नहीं है। पाइरूबिक एसिड जो है लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है, इतना ही प्रक्रिया होती है। उसमें बैक्टीरिया उसमें मदद करते हैं, तो फर्मेंटेशन को लोग जो थोड़ा बहुत पढ़ते हैं वो लोग फर्मेंटेशन का हल्ला करके और बड़े लोगों को या कि घर के माँ को चिढ़ाते हैं कि देखो माँ तुम तो दही खाती हो उसमें फर्मेंटेशन होता है और हमारे आलू खाने को तुम मना करती हो, तो आलू में भी तो वही होता है जो कि दही में होता है, ऐसा कह देते हैं बड़ी जल्दी से। तो ये थोड़ा अधकचरा ज्ञान कहलाएगा। फर्मेंटेशन के बारे में पढ़ना चाहिए कि फर्मेंटेशन इज नथिंग बट ए केमिकल प्रोसेस प्रोसीड बाई माइक्रोब्स, ऐसी परिभाषा लिखी उसमें। और फर्मेंटेशन भी कई प्रकार का होता है, लैक्टोबैसिलस फर्मेंटेशन खाने पीने की चीज़ों में उपयोग में आता है और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी खाने पीने की चीज़ों में उपयोग में आता है। इसके अलावा जो ऑर्गेनिक फर्मेंटेशन होते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड का फर्मेंटेशन, SO2 का फर्मेंटेशन होता है, बाकी इनऑर्गेनिक फर्मेंटेशन भी होते हैं बहुत प्रकार के हैं, लेकिन अपने लिए दो ही उपयोगी हैं, लैक्टोबैसिलस फर्मेंटेशन और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो क्या होता है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन तो जाइमेज वगैरह से होता है, जैसे कि अपन दही में शक्कर डाल दें तो उसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो कन्वर्ट होकर के जाइमेज में और फिर अल्कोहल बनाता है, C2H5OH, ये उसका फॉर्मूला है। और ये जो लैक्टोबैसिलस फर्मेंटेशन है इसमें कुछ नहीं होता, पाइरूबिक एसिड लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और जो दूध की कैशीन है, प्रोटीन जिसको कहते हैं, वो कॉगलेट होकर के इकट्ठी होकर के नीचे पैसिपिटेट हो जाती, थक्का जम जाता उसका, उसी को अपन दही कहते हैं। इतनी कुल प्रक्रिया है, पर होती छोटे छोटे जीव राशियों से है, एक इंद्री जीव से होती है जैसे वनस्पति में है, वैसे तो रोटी में भी वही प्रक्रिया होती है। लेकिन इसके मायने ये नहीं है कि हम ऐसा सोच करके और जमीकंद खाने लगें या और भी जो चीज़ें हैं उनका बिल्कुल अलग हिसाब है, जमीकंद के बारे में अलग समझिएगा, पर जब अपन दही के बारे में समझ रहे हैं तो दही में इतनी ही कुल प्रक्रिया होती है। इसके बाद क्या होता है कि पहले बेबी बैक्टीरिया होते हैं, ये किताब में नहीं मिलेगा, बहुत डिस्कशन के बाद और बड़ी मेहनत से ये चीज़ समझ में मेरे आई, बहुत वर्षों में 3 बरस लगे और विदेश के मैं जिन लोगों ने फर्मेंटेशन पे काम किया है उनसे भी डिस्कशन किया और अल्टीमेटली ये रिजल्ट आया कि भाई ये सिर्फ एक इंद्री जीव है बैक्टीरिया और कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, त्रस जीव नहीं है ये। हम लोग त्रस जीव से मांस का दोष मानते हैं, एक इंद्री जीव में मांस का दोष नहीं मानते, इसलिए ये मांसाहार नहीं है। और इसमें पहले बेबी बैक्टीरिया होते हैं, फिर वे यंग हो जाते हैं और फिर उसके बाद ओल्ड बैक्टीरिया, ऐसे 3 उनकी स्टेजेस होती हैं, पता नहीं लगता है क्योंकि इतना शॉर्ट लाइफ साइकिल है इनका, इतने जल्दी जन्म मरण होता है कि अपन को तो पता ही नहीं लगता कि वो कब जीवित थे और कब नहीं जीवित थे। वायरस साइंस कहता है कि लिविंग भी है नॉन लिविंग भी है, हम जब तक प्रैक्टिकल करते हैं तो नॉन लिविंग मालूम पड़ते हैं, फिर कभी लिविंग की क्वालिटी माने प्रॉपर्टीज देने लगते हैं, फिर नॉन लिविंग की प्रॉपर्टीज भी उनमें आती हैं। ये क्या चीज़ है, इस पर विचार हुआ तो यही कि बहुत जल्दी चूंकि जन्म मरण होता है इसलिए हम नहीं कह सकते कि जीवित हैं कि नहीं जीवित हैं। तो इसके बावजूद भी उन्होंने ऐसा डिवाइडेशन किया कि या बेबी बैक्टीरिया का काम यह है, स्टार्टिंग में वो वाइनरी फिशन करते हैं और कुछ नहीं करते, 1 के 2, 2 के 4, 4 के 16, सीधा सीधा हिसाब उनका चलता है, मल्टीपल होते चले जाते हैं और अपनी संख्या बढ़ाते हैं। बेबी बैक्टीरिया का काम संख्या बढ़ाना है, यंग बैक्टीरिया का काम है अल्कोहल बना, यंग बैक्टीरिया का काम है एसिड बनाना और वाइनरी फिशन तो करते ही है। पर वे साथ में एसिड बनाते हैं, यंग बैक्टीरिया। और जो ओल्ड बैक्टीरिया हैं उनके दो काम हैं कि आगे के लिए अपने स्पोर्स बनाना, बीज जिसको अपन कहते हैं, आगे संतति चलती रहे उसके लिए, और दूसरा अल्कोहल बनाने शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए तो जब जब एक स्थिति के बाद दही में भी अल्कोहल बनना शुरू हो जाता, 24 घंटे के बाद बहुत खट्टा होना शुरू हो जाता है और भी विशेष प्रकार की गंध आने लगती एस्टर बनने की वजह से, तो फिर अपन छोड़ देते हैं उसको 24 घंटे से ज़्यादा। वैसे तो आयुर्वेद के हिसाब से 6 घंटे के बाद का दही नहीं उपयोग करना चाहिए, स्वास्थ्य की दृष्टि से तो 6 घंटे तक का जमा हुआ दही ठीक है। तो ऐसी सब चीज़ों को समझने के बाद और अपन इसी निर्णय पर पहुँचते हैं कि भैया त्यागी व्रति भी दही और छाछ का उपयोग करता है। आचार्यों ने तो संलेखना के समय छाछ का उपयोग बताया है, पर क्या करें, आज का जमाना ऐसा आ गया है कि किसी और दूसरी चीज़ को खाना हो तो फिर किसी जो खाने वाली चीज़ है उसमें भी दोष दिखाने लगते हैं। जैसे कि जमाना अंडा को तो शाकाहारी कहता है और दूध को मांसाहारी कहता है, अब ऐसे ज़माने के लिए हम क्या कहें, कुछ भी तो सिद्ध कर लेते हैं अपने स्वाद के लिए। अब नहीं छोड़ा जा रहा है तो दूसरा ऑब्जेक्शन डाल देंगे तो अपन मुश्किल में पड़ जाएंगे। आलू नहीं छोड़ा जा रहा है तो कह रहे हैं कि अच्छा आपके दही में भी तो फर्मेंटेशन होता है, अब ले तो फर्मेंटेशन होता है तो फर्मेंटेशन तो फल का बनता है तब भी होता है। नई वाली बहू आती है उससे चपाती नहीं फूलती है तो उसको सासू की डांट पड़ती कि तैने कभी सीखा है रोटी बनाते, तो कैसे बनाई जाती, तो जरा कनक कुसन करके रख दो और ढक के रख दो आधे घंटे, जब रबा फूलेगा तब बनाना, तब फूलेगा फल का, ऐसे नहीं फूलने वाला। तो वो जो रबा फूलता है आधे घंटे वो और कुछ नहीं है, वो फर्मेंटेशन हो रहा है उसमें। इडली डोसा बनाते हैं फर्मेंटेशन होता है, हम सेव फल खाते हैं, कोई भी फल खाते हैं उसमें बिना फर्मेंटेशन के तो वो पकते ही नहीं है, वो पकने की प्रक्रिया जो है वो फर्मेंटेशन की प्रक्रिया है। पक जाता हमारे खाने लायक बन जाता, फिर पिट्रिफिकेशन शुरू होता, फिर उसमें सड़ने की प्रक्रिया होती जिसको अपन सड़ना कहते हैं, वो सड़ना वड़ना नहीं है, वो बैक्टीरिया अपने खाने लायक बना रहा है, वो उसके बाद की स्टेज है। हमारे खाने लायक बनाता है तो हम फौरन उसको ले लेते हैं, उसके बाद उसको छोड़ते ही नहीं है, और जब कभी छूट जाता है रखा रह जाता है तो उसमें क्या बोलते, दागी होना शुरू हो गया, ऐसे सेव फल में दाग आना शुरू हो जाते, वो दागी नहीं हो गया, वो उसने अपने खाने लायक बना लिया, आपके खाने लायक नहीं रहा अब वो, उसको अपन सड़ना बोलते हैं, फिट्रिफिकेशन। तो ये फर्मेंटेशन की प्रक्रिया तो कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है। हाँ अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जरूर है, जैसे कि पॉपुलर बनता है, ब्रेड बनता है, ब्रेड में अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है, अल्कोहल सीधा सीधा बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, उन सब में अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है, अल्कोहल तो होता ही है, और भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं उसमें, मिक्सअप भी बहुत सारी चीज़ें की जा रही। तो दही के बारे में भाई इतनी चर्चा आपसे करनी थी। जमीकंद के बारे में क्वेश्चन तो और कोई है नहीं, तो क्या करें, जमीकंद के बारे में बता देते हैं आपको, और एक वो सॉफ्ट ड्रिंक का उन्होंने मेरे को पेपर दिया था वो ही बता देते हैं, फिर आपकी जैसी मर्जी। बैग में से जो है वो लाना पड़ेगा, या तो बैग ही ले आओ, हैं बैग ले आओ तो मैं उसमें से निकाल दूँ, उसमें क्या क्या मिक्सअप है ये लिखा है। अपन जमीकंद के बारे में कह रहे थे, तुम्हारा ये तो हमने बता दिया दही और उसके बारे में, जमीकंद के बारे में दो तरह के रूप वनस्पतियाँ होती हैं, एक अंडरग्राउंड रूट्स होती हैं, एक एरियल रूट्स होती हैं, एक वायवीय पौधे हैं और एक भूमिगत पौधे हैं। तो ये जितने भी अपन लोग जमीकंद जिनको कहते हैं वो सब भूमिगत पौधे हैं। वो जो भूमिगत पौधे हैं उनकी क्या प्रक्रिया है, उसमें भी कुछ कुछ जड़ें हैं जो खाने लायक होती लोग खाते हैं, और कुछ जो है वो तना होता है जो खाने के योग होता है। इस प्रकार दो होते हैं, स्टेम रूट्स होते हैं और रूट भी अपने आप में खाने की चीज़ है, जैसे कि मूली है, गाजर है, ये उसकी जड़ें हैं उस पौधे की जो कि हम अपने खाने के उपयोग में लेते हैं। और ये जो आलू है वो स्टेम रूट है, वो उसका तना है, उसमें वो बल्ब जैसा जो है अपने भोजन को संचित करके रखता है वो पौधा, 6 महीने तक जिंदा रहता वो पौधा ऊपर, और वो जमीन में अपनी तने को जमीन के अंदर भेज देता है। और उस तने में बल्ब जैसे और ऐसे लग जाते हैं ढेर सारे, वो उसका संचित भोज्य पदार्थ है, आड़े समय में वो उसके काम आता है, लेकिन हम उससे वो छीन लेते हैं और पूरे पौधे को नष्ट कर देते हैं। एक फल खाने के लिए, एक मूली एक गाजर खाने के लिए पूरा पौधा नष्ट करना पड़ता, उसके बिना नहीं चलता काम। और अपने यहां पर हमेशा मंत्रों बना रहता है कि छह लेशाओं के बारे में, कि एक फल खाने के लिए पूरा पेड़ काट दिया, तो बड़ा आश्चर्य होता था कि अरे आम खाना है तो एक आम तोड़ लो, पूरा पेड़ काटने कैसा बुद्धू होगा वो। नहीं, आप समझ में आता है कि ये जो मूली खाने वाला है वो इसी तरह का है, गाजर खाने वाला उसकी आसक्ति इतनी अधिक है, उसकी लेशा कृष्ण लेशा मानी जाएगी, देखिएगा, उसको मालूम है कि एक पूरा का पूरा पेड़ खत्म होने वाला है, पर उसको तो वो चाहिए, गाजर चाहिए, वो मूली चाहिए उसको, चाहे पूरा पेड़ मिट जाए, वो मिटता ही है उस, उसके बिना नहीं होता। प्याज के साथ भी यही है, जितने समीकंद हैं उन सब के साथ यही स्थिति है। एक चीज तो ये हो गई, दूसरी चीज ये कि जो जमीन होती है फर्टाइल सॉइल होती है, जिसमें कि उपजाऊ जमीन जिसको कहते हैं, उसमें एक स्क्वायर फीट में मिलियंस ऑफ मिलियन बैक्टीरिया होते हैं, माने लाखों की तादाद में बैक्टीरिया होते हैं। केंद्रीय जीव वहां बहुत रिच, बहुत अधिक क्वांटिटी में, यूज क्वांटिटी में होते हैं, और अगर उसमें उनके खाने की योग्य सामग्री भी मिल जाए तब तो फिर देखिए कितनी मात्रा में होंगे। एक मूली उखाड़ते हैं तो उसमें मिलियंस ऑफ मिलियन बैक्टीरिया उसके आसपास जो ग्रो कर रहे थे, जीवित थे, वे सब मर जाते हैं एक झटके में। ऐसा ही आलू के साथ है, ऐसा ही हर एक जमीकंद के साथ। अच्छा, और इतना भी नहीं है, इसके साथ मजा यह है कि एक एक आलू में 10-10, 20-20 आईवर्ट्स होते हैं। साइंस की भाषा में उनको आईवर्ट्स कहते हैं, अपनी भाषा में उसको अकुआ कहते हैं, कि भैया अगर पीस कर करके और उसको लगा दो तो उसमें से अकुआ फूट आते, जितने फूट आएंगे उतने पेड़ उसमें से निकल सकते हैं। तो एक एक आलू 10-10 पेड़ पैदा कर सकता है आलू का, लेकिन हमने उस आलू को नष्ट करके होने वाले 10 पेड़ों को पहले से ही नष्ट कर दिया। इसलिए इतना ज्यादा अपराध अपने यहां पर इन जमीकंद के साथ कहा गया है कि आप अगर इन चीजों को नहीं खाएंगे तो मर नहीं जाएंगे। जो लोग इनको नहीं खाते वो मर नहीं गए हैं, वो भी अपना सर्वाइव करते हैं, वो भी अपने जीते हैं, और दुनिया में जितनी चीजें बनी हुई हैं वे सब हमारे हजम करने के लिए, खाने के लिए नहीं बनी हुई है, ये ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा अपने योग उसमें से ले लिया और बाकी सब छोड़ दिया, जिससे अपना जीवन चलता है। कार्बोहाइड्रेट का ऐसा कोई टोटा नहीं है भारत में, विदेश में टोटा हो सकता, कार्बोहाइड्रेट की टेबलेट खाना पड़ती है जापानीज को, एक पूरी 150 mg की टैबलेट आती है वो खाना पड़ती, क्योंकि हरी सब्जियां नहीं मिलती। कार्बोहाइड्रेट के लिए अपने पास चपाती बहुत है जिसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, अपने पास चावल बहुत है जिसमें, उसका मार सहित पी जाओ तो ढेर कार्बोहाइड्रेट हो गया, स्टार्च भी हो गया उसके साथ। तो इसलिए अकेले कार्बोहाइड्रेट, जो मांसाहारी होता है उसको आलू खाना जरूरी होता, ये ध्यान रखना, शाकाहारी को आलू बिल्कुल जरूरी नहीं है। ये आड़े समय में जब ऊपर वनस्पतियां नहीं मिलती थी तब लोगों ने जमीन से खोद खोद कर खाना शुरू कर दी, और ये उस वो स्थिति में ये डेवलप हुआ है। कई लोग कहते हैं कि 400 साल पुराना तो है ही आलू, पहले कैसे लिखा होगा आचार्यों ने आलू का, तो पता नहीं लोग अपने ज्ञान की वजह से दूसरे को क्यों इतना अज्ञानी मानते हैं। तो इससे भी सावधान रहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सारी चीजें बहुत पहले से हैं और आचार्यों ने इनका सबका वर्णन किया है, और इसीलिए जमीकंद खाने का निषेध किया अपने यहाँ पर, वो बिल्कुल अलग चीज है। जमीकंद में जीव राशि एक इंद्री होते हुए भी अनंत काय होती है, एक के आश्रित अनंत जीव होते हैं, इसलिए हम एक छोटा सा पीस जमीकंद का उपयोग करते हैं तो लाखों की तादाद में छोटे जीव राशि नष्ट हो जाती, इसलिए है वो एक इंद्री जीव ही। और इतना ही नहीं है, उस जमीकंद के उखाड़ने में जो छोटे मोटे और जीव हैं, दो इंद्री तीन इंद्री जीव हैं, कैचुए हैं और बहुत से, वो सब नष्ट हो जाते हैं। लेकिन सावधान रहना, आपके अंदर तर्क उठ सकता है कि जब हम गेहूं और इस क्रॉप लेते हैं चने की और इन सब की, उसमें भी तो होता होगा, देखिए वो बिल्कुल एरियल रूट्स हैं, उनमें जमीन को डिस्टर्ब नहीं करना पड़ता, सिर्फ एक बार जमीन को जोत करके बीज बोना पड़ता, उसके बाद तो ऊपर ऊपर से ही मामला होता, फिर जमीन के अंदर डिस्टर्ब नहीं किया जाता। लेकिन इसमें तो जमीन में बोते समय भी और जमीन से फिर इन सबको निकालते समय भी भारी मात्रा में हिंसा है। इस वजह से जमीकंद का अपने यहाँ निषेध है। जमीकंद को आप दही से कंपेयर मत करिएगा, दही बिल्कुल अलग चीज़ है और जमीकंद का गणित बिल्कुल अलग चीज़ है। इसलिए दोनों में, चूंकि जमीकंद में प्रचुर मात्रा में हिंसा है और दही में अल्प है, हिंसा तो है लेकिन अल्प मात्रा में है, इसलिए कोई अगर उसको त्यागी व्रती भी ग्रहण करता है तो उसके योग है, लेकिन जमीकंद उसके योग नहीं है। ये दोनों के बीच में ध्यान रखिए। मैं आपसे और ये कह रहा था कि ये जो फर्मेंटेशन की प्रक्रिया होती है वो उसके अलावा भी और क्या क्या होता है सॉफ्ट ड्रिंक्स या कोल्ड ड्रिंक्स में, तो इनसे सावधान होने के लिए और भी मैंने बहुत सारे पेपर्स में पढ़ा था। अच्छा वाह, मैं सोच रहा था कि आप पंखा चला रहे हैं तो मुझे आश्चर्य हो रहा था कि पंखे का इस समय क्या काम है। मेहमान नवाजी हम भारतीयों की विशेषता है, घर पहुंचते ही पूछेंगे कि चाय पियेंगे या ठंडा। पर अमेरिका की द अर्थ आइलैंड जर्नल में एक शोध किया है, उसके अनुसार हर कोका कोला पेप्सी की एक बोतल में 40 से 72 मिलीग्राम तक नशीले तत्व ग्लिसरीन, अल्कोहल, ईस्टर गम और पशुओं से प्राप्त ग्लिसरॉल पाए जाते हैं। इसलिए शाकाहारी किसी भ्रम में न रहें कि ये शाकाहार है, ये एकदम मांसाहार है, सॉफ्ट ड्रिंक और कोल्ड ड्रिंक, ये ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक आश्रित उनकी अन्न खोजें हैं। साइट्रिक एसिड होने के कारण शौचालय में किसी भी सॉफ्ट ड्रिंक को एक घंटे के लिए डाल दें तो वो फिनाइल की तरह उसको साफ कर देगा। कहीं जंग लग रही हो तो इस एक पेय पदार्थ, ये सॉफ्ट ड्रिंक्स या कोल्ड ड्रिंक्स, कपड़े में भिगो करके रगड़ दें, वहां से जंग साफ हो जाएगी। वस्त्रों पर ग्रीस लग गई हो तो साबुन के साथ साथ उसे कोल्ड ड्रिंक में भिगो के रख दें, वो दाग बिल्कुल छूट जाएगा। आदमी की लाश की हड्डी और दांत को गलाने के लिए पृथ्वी को भी कई वर्ष लग जाते हैं, लेकिन सॉफ्ट ड्रिंक में कुल 10 दिन तक हड्डी पड़ी रहे तो वो गल करके नष्ट हो जाती है। आप ये सुन रहे हैं इन चीजों को, इसके बाद भी नहीं छोड़ेंगे तो मैं आपको क्या मानूंगा, गैर बुद्धिमान तो नहीं कहूंगा, मैं अतिरिक्त बुद्धिमान जरूर कहूंगा। इस तरह 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 के कोका पी करके अपने पेट में हम केमिकल्स डाल रहे हैं और अपने शरीर को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। 2 माह पूर्व दिल्ली विश्वविद्यालय की एक प्रतियोगिता में सर्वाधिक कोका कौन पी सकता है मुकाबले में एक छात्र ने 8 बोतल पी। पेट में बहुत अधिक कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाने से घटना स्थल पर उसकी मृत्यु हो गई। आखिर यह खतरनाक पेय बेचकर बच्चे, मेहमान और स्वयं को पिलाकर हम किस हादसे की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये नई दिल्ली से पब्लिश हुआ और उन्होंने इसके बारे में दिया। पेप्सी वालों का तो डिक्लेयर है कि हम उसमें जितने भी पेप्सी के कोल्ड ड्रिंक्स बनते हैं कंपनी के, उनका कहना है कि हम उसमें बीफ जिलेटिन मिलाते हैं। किसी मॉमडन ने पूछा था उनसे कि हमने सुना है कि आप शुगर का माउस यूज करते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, डोंट वरी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हम सुअर का नहीं करते, हम तो बीफ जिलेटिन, हम तो गाय का यूज करते हैं। तो मामला खुल गया वो। तो ऐसी सब चीजें हैं ग्लिसरॉल के रूप में। मैं भी सोचता था कि माउस का उसमें क्या काम, लेकिन ये जो पशुओं से प्राप्त ग्लिसरॉल है और जो जेल है, जेली जिसको कहते हैं, जो कि हड्डियों को गला करके बनती है, वो दोनों इसमें यूज होती हैं। और अपन लोग जो है 10-10 रुपए की बॉटल, और अब तो बॉटल संस्कृति आ गई, पानी भी बॉटल में, पाउच में, तो थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए भाई, ये हमारी संस्कृति नहीं है। हम ऐसे पानी तो पी सकते हैं लेकिन बोतल नहीं अड़ा सकते। बोतल में तो एक ही चीज पी जाती है जो कि सब लोगों के पीने योग्य नहीं होती। बोतल जिसके मुंह में है तो वो समझिएगा कि अब उसका पतन तो हो ही गया, चाहे वो पानी की बोतल हो और चाहे कोई भी हो। बड़े बूढ़े तक पी रहे हैं, बहनें लोग पी रही हैं, माँ लोग पी रही हैं और बहुत शौक से पी रही हैं बोतल मुंह में लगाए हुए। उन्हें इस बात पे विचार करना चाहिए, वे फॉरवर्ड कहलाने के चक्कर में और अपने जीवन के साथ क्या कर रहे हैं। कभी पढ़िए, अगर लेख आते हैं, अपन लोग पढ़ते नहीं हैं और उससे अपन कोई शिक्षा भी नहीं लेते हैं, क्या करें, देखा देखी बहुत सी चीजें अपने स्टेटस के पीछे और कुछ नहीं। लोग मुझे बैकवर्ड समझेंगे यदि मैं छन्ना लगा के और ओक में भर करके पानी पी लूं, तो बॉटल से पीऊंगा तो लोग मुझे जो है अच्छा समझेंगे, फॉरवर्ड समझेंगे, गिलास से नहीं पी सकते हम। तो अब इसके लिए हम क्या कहें, कुछ मत कहलवाइएगा, वही ज़्यादा ठीक है। अच्छा नहीं लगता फिर, कई बार खुद भी लगने लगता है कि क्या परिवर्तन संभव है। परिवर्तन तो बहुत मुश्किल है, संभव तो है पर बहुत मुश्किल है। जो चीज़ एक बार चलन में आ जाती है फिर बहुत कठिन होता है। और आ गई है चलन में, छोटे छोटे से बच्चों को बॉटल मुंह में लगाए हुए देखता हूं तो कैसा लगने लगता है कि कहां पहुंचेंगे हम धीरे धीरे जाकर के। ऐसी कोई हमारे पास समस्या तो थी नहीं कि हमारे पास गिलास नहीं थे या कि हम उसमें नहीं पी सकते थे या हम अपने चुल्लू में भर के नहीं पी सकते हैं। उसमें लिखा हुआ है कि जब लोग किसी को पानी पिलाते थे तो आंखों आंखों में ये खट्टा मीठा रिश्ता तय हो जाता था। लोग पानी पीते पीते भी और एक दूसरे के प्रति अपनी आत्मीयता व्यक्त कर देते थे। अब वो सारे दिन लद गए, कोई पानी पिलाने वाला नहीं है। बॉटल खरीदो, पाउच खरीदो, तोड़ो मुंह से और पियो। पहले किसी भी राहगीर को घर में जगह दे देना और लोटा भर करके पानी पिला देना, ये हमारी संस्कृति का प्रतीक था। अब वो सब चीज़ खत्म हो गई। एक व्यक्ति ने बहुत बड़ी बात लिखी है, उनने लिखा है कि मुझ जैसा गमार, हाँ, बंबई की चौपाटी पर पानी बिकते देखकर और बहुत तकलीफ पा रहा है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ कि जिस दिन पांच भूत तत्वों में से कोई चीज़ बोतल में बंद होकर बिकने लगे तो समझना कि उस संस्कृति का पतन शीघ्र होने वाला है। पांच भूत तत्व में एक जल तत्व भी है। ऐसा ना हो कि कल के दिन हमें ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी, ऑक्सीजन भी हमें पैसे में खरीदनी पड़े, पानी किसी को पैसे में खरीदना पड़े। मिनरल वाटर का प्रचलन चला था, उस मिनरल वाटर की जगह पर जो है अब जो है सामान्य पानी भी एक रोजगार बन गया है। अब पानी पिलाना पुण्य नहीं है, पानी पिलाना धंधा है, ऐसा लिखा उन्होंने बहुत पीड़ा से युक्त होके। समझना चाहिए इन चीजों को, घड़ी रखिएगा नहीं तो समय के समय जो दिक्कत कुमारियां आती हैं, क्या वो मोक्ष नहीं जाएंगी, क्या इसी पद पर रहेंगी? नहीं, ऐसा तो नहीं है, वो धीरे धीरे अपना कल्याण करके मोक्ष चली जा सकती हैं, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा हुआ है। सची के बारे में लिखा हुआ है कि सची एक भवावतारी होती, पर दिक्कत कुमारी वगैरह के बारे में ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं पढ़ने में आया मेरी। भाई मैंने पूरा नहीं पढ़ा, जितना पढ़ा है उसमें से कहीं ये नहीं आया कि दिक्कत कुमारियाँ एक भवावतारी होती हैं या आगे दो तीन भाव में चली जाएंगी। पर जो भगवान के निकट उनकी सेवा में उपस्थित हैं तो उनको तो मोक्ष का अवसर और लोगों की अपेक्षा जल्दी ही मिलेगा। मेरे अपने ख्याल से तो ये है, जब तक मैं कहीं देख नहीं लूँगा लिखा तब तक नहीं कह सकता कि वे एक भवावतारी हैं, दो भाव में चली जाएंगी, तीन भाव में चली जाएंगी। सची के लिए तो निश्चित है। पूजा करते समय स्थापना करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, जैसा आपको अच्छा लगे, इसमें कहीं कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ना कोई इससे ज़्यादा फर्क पड़ता है। अगर हमने स्थापना करी है तो भी, और अगर हमने नहीं करी है तो भी, अल्टीमेटली करना तो पड़ती है, चाहे चावलों में करो बाहर या कि हृदय में करो, दोनों जगह। और जो लोग दोनों जगह करते हैं वे ज़्यादा लाभ में रहते हैं, और जो एक ही जगह करते हैं, अब बाहर बाहर कर ली भीतर नहीं करी तो भी हानि है, और भीतर भीतर कर ली बाहर से कुछ प्रक्रिया ही नहीं करी तो भी कोई अधूरापन तो कहलाएगा। जैसे कई लोग कहते हैं कि हम समाज सेवा करते हैं, मानव सेवा करते हैं, अब मंदिर जाने की क्या जरूरत? तो जिसने मानव सेवा सिखाई, जिसने मानव सेवा सर्वाधिक करके और अपना कल्याण कर लिया, उसके चरणों में माथा टेकने भी नहीं जाएंगे, इतना अधूरापन। तो जो लोग मानव सेवा में लगे हैं वे मंदिर नहीं जाते, वे भी अधूरे हैं, और जो सिर्फ मंदिर जाते हैं और मानव सेवा नहीं करते वे भी अधूरे हैं। ठीक इसी तरह की बात यह है कि जो लोग अंतरंग में तो आवाहन करते हैं, स्थापन करते हैं, सन्निधिकरण करते हैं भगवान का, लेकिन बाहर तीन चावल चढ़ाने में कोताही करते हैं, कंजूसी करते हैं, तो वो भी ठीक नहीं। और जो सिर्फ तीन चावल चढ़ाने में ही पूजा मान लेते हैं और भीतर भगवान का स्पर्श ही नहीं होने देते हैं, उनको भी मैं क्या कहूँ भैया, दोनों के बीच कोई समन्वय कर लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो ये चीज़ें सिर्फ उलझाने वाली हैं, कोई कहेगा कि चढ़ाना चाहिए, कोई कहेगा नहीं चढ़ाना चाहिए, और इससे ज़्यादा क्या होगा। तो दो पाली बन गई, चढ़ाने वाले लोग अलग हो गए, नहीं चढ़ाने वाले लोग अलग हो गए। कुछ सोल्यूशन निकला क्या? एक बार ऐसा हुआ कि एक गांव में एक नास्तिक था और एक आस्तिक था। एक बार गांव के लोगों ने परेशान होकर कहा कि भैया दो जने बैठ जाओ और तय कर लो का सही है, और दोनों जन का शास्त्रार्थ चला। दो दिन तक चलता रहा वो शास्त्रार्थ, रात भर चलता था, और फिर शास्त्रार्थ खत्म हो गया। लोगों ने कहा चलो शांति भाई, अब ये दो ही समझ गए हुई हैं। लेकिन अगले दिन देखा तो वो जो आस्तिक था वो पोटली में सारे भगवान बांध के जा रहा था। उससे कहाँ जा रहे हो? कह ले उस नास्तिक ने जो तर्क दिए हैं उनसे मैं प्रभावित हूँ, अब तो मैं भी जो है भगवान की पूजा छोड़ता हूँ, इनको सबको सिराने जा रहा हूँ। कहा चलो भैया ये भी ठीक है कि कम से कम दो ही नास्तिक हो गए, झगड़ा तो खत्म। लेकिन जब नास्तिक से मिले तो पता लगा कि वो तो ओम जय जगदीश हरे कर रहा था। हाँ वो आरती वारती उतार रहा था, वो अगरबत्ती लगा रहा था, वो बहुत बढ़िया ठाट वाट से पूजा वूजा कर रहा था एकदम। तो उससे कहा कि क्या करते हो तुम? तो उसने कहा कि आस्तिक ने क्या तर्क दिए हैं, भगवान तो होने चाहिए, मैंने तो अब भगवान अपने घर में ला करके रख लिए, रोज पूजा करता हूँ। उस गाँव में पहले भी एक आस्तिक और एक नास्तिक था, अभी भी एक आस्तिक और नास्तिक है। ऐसे ही अपन के साथ में है कि जब थोड़ी सी प्रक्रिया बदल लेते हैं, अगर कोई तर्क देता है तो चढ़ाने वाला चढ़ाना छोड़ देता है, या कि नहीं चढ़ाता है तो वो चढ़ाना शुरू कर देता है, रहते जो दोनों एक ही जगह हैं। नहीं भैया, समझना चाहिए कि कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जो कि अंतरंग में होती हैं पर उनकी बाहर अभिव्यक्ति होती है। मैं इसके लिए हमेशा उदाहरण देता हूँ कि देखो दूसरे के घर जाते हैं, बेटे देखने के लिए जाते हैं, बहू देखने के लिए जाते हैं, तो क्या करते हैं? व्यवहार देके आते कि नहीं? दो रुपया पांच रुपया जितनी अपनी हैसियत है। तो कभी अभी गरीब आदमी है का तुम्हारा पैसा बेचाने आए उनको? कहते नहीं, ये व्यवहार लगता है। जैसे कि वहां हम व्यवहार का ध्यान रखते हैं, ऐसे ही पूजा में भी। पूजा तो पूरा व्यवहार ही का मामला है, स्थापना का मामला है। वहां कहां पत्थर में भगवान है, वो तो हमने जो है सा आयम इति स्थापमाना स्थापना, ये भगवान ही है ऐसी हमने उसमें अपने बुद्धि से स्थापना करती। भगवान तो सिद्ध सिलामे है, ने हमारे चावल चढ़ाने और आवाहन करने से यहां उतर के आते हैं। लेकिन क्या करें, हमारा मन नहीं मानता है, सो हम कहते कि भगवान ये चढ़े तीन चावल, और जब तक जी इसमें चढ़े हैं तब तक आप हमारे लाने मूर्ति में रह जाइयो और हम भी इतने से ने हट हैं जी। असल में हमने अपनी स्थापना कर ली कि ये तीन चावल चढ़े तो हमें तीन खड़े रहे, जब तक ये तीन चावल को विसर्जन नहीं हुई जब तक हम इतने से हट हैं ने। और भगवान भी हमारे लिए मूर्ति में है वैसे तो, सिद्ध सिलाम विराजे। तो ऐसा कुछ ले करके और समन्वय करके और इस प्रक्रिया को करना चाहिए, जिद नहीं करना चाहिए। जहां आग्रह है वहां कषाय है, इसलिए निराग्रही होना चाहिए। और निराग्रह होकर के जो माने वास्तविक प्रक्रिया है उसको एडॉप्ट करना चाहिए। एक वर्ग स्थापना करने वालों का है, एक नहीं। वो तो मैंने पहले ही कह दिया कि जब कोई ऐसी बात होती है, ये तो बहुत लंबा क्वेश्चन है, बहुत देर से दिया आपने, घड़ी नहीं रखी, अच्छा लग, थैंक्स। ये भाग और बड़ा है कि पुरुषार्थ बड़ा है, इसको पहले करूं। यकीन छोटे छोटे क्वेश्चंस को, इस क्वेश्चन में कम से कम 15-20 मिनट तो लगेंगे, इसलिए मैं आज इसको नहीं विस्तार रहा हूं, ये फिर आराम से करूंगा। अरहंत नाम वाली कविता सुना दें, सुनाऊंगा कभी, अभी तो आई हूं। अरे मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा, मैंने ये कहा कि अभी तो आया हूं और आप एकदम कह रहे हैं, आप मेरी भाषा समझने लगे मतलब। अरे वाह, ये तो मामला गड़बड़ हो गया, अब हम बहुत संभल के बोलेंगे। अगर एक कोई व्यक्ति, क्या लिखा, एक कातिल, कातिल होना चाहिए, एक कातिल किसी का घात करता है तो उसे बहुत पाप पड़ता है, पर अगर कई सैनिक लड़ाई के समय हत्या करते हैं तो उन्हें उतना ही पाप पड़ता होगा। ये भैया इंटेंशन पे डिपेंड करता है, भावों पे निर्भर करता है। अपने यहाँ पर भाव हिंसा और द्रव्य हिंसा दो तरह की हिंसा कही गई, संकल्पी हिंसा, विरोधी हिंसा, औद्योगिक हिंसा, आरंभी हिंसा, ऐसी चार प्रकार की तो कही है, पर द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा भी कही है। डॉकू, डॉक्टर और ड्राइवर, ऐसे तीन का उदाहरण दिया हुआ कि डॉकू जो है वो संकल्प करके किसी को मारता है, वो उसकी भाव हिंसा बहुत अधिक है इसलिए उसको हम सबसे अधिक हिंसक मानते हैं। ड्राइवर रास्ते से गाड़ी होशियारी से चलाता है, कभी चूक जाता है और एक्सीडेंट में कोई मर जाता है तो वो डाकू के समान उतनी अधिक हिंसा नहीं करता है। और एक डॉक्टर के हाथ से जरा सी चाकू फिसल जाने पर किसी का जीवन नष्ट हो जाता है, जबकि वो उसको बचाने के पूरे प्रयास कर रहा था, ऑपरेशन उसने बचाने के लिए किया था, लेकिन बाय द वे ऐसा हुआ कि नहीं बच पाया, तब वहां भी मरा है। तीनों जगह देखा जाए तो डॉकू से भी मरा है व्यक्ति, ड्राइवर से भी मरा है, डॉक्टर से भी मरा है, लेकिन तीनों में एम्फेसिस अलग अलग है, उनका भाव बिल्कुल अलग अलग है, उनकी भावों की तीव्रता मंदता भी अलग अलग है। इसलिए अपने यहां पर भावों का बहुत महत्व है। कोई व्यक्ति जानबूझकर और किसी को मारता है, और कोई व्यक्ति अपने देश की सुरक्षा के लिए, अपनी आत्मरक्षा के लिए, अपने देवगुरु शास्त्र पर होने वाली विपत्ति के लिए अगर कोई कदम उठाता है, हिंसा भी करता है, तब वो विरोधी हिंसा कहलाती, वो संकल्पी हिंसा नहीं कहलाती। इसलिए जो एक मर्डरर है, वो किसी का मर्डर करता है तो वो इंटेंशनली कर रहा है, इसलिए उसकी हिंसा का वजन ज्यादा है। और सैनिक अपने देश की सुरक्षा के लिए, और भारतीय संस्कृति देखिएगा, हमने कभी किसी पर जानबूझ के आक्रमण नहीं किया, किसी ने आक्रमण किया तो हमने जवाब दिया, हमेशा जवाब दिया। आप कभी भी पेपरों में पढ़ते हैं वर्षों से युद्ध चला आ रहा है, लेकिन जब उन्होंने वहां से हमारे ऊपर आक्रमण किया तब बहुत देर के बाद, अपने यहां पर सहसा ऑर्डर नहीं देते हैं, युद्ध विराम के ऑर्डर तो बहुत जल्दी हो जाते हैं, लेकिन फाइटिंग इतना अकेला शब्द जो है वो बहुत मुश्किल से निकलता। उस पोस्ट पर जो रहता है वो बहुत पेशेंस, बहुत धैर्य वाला हो सकता। मैं तो यही पढ़ करके देखता हूं कि अरे ये लोग फट से कोई आदेश नहीं देते फायरिंग का, अपन को लगता है अरे वो तो चले ही आ रहे हैं और वो इतना उपद्रव कर रहे हैं, अपन कुछ भी नहीं कर रहे। नहीं, बहुत पेशेंस चाहिए, देख लो पहले कि अपनी कोई क्षति हो रही क्या, अपनी क्षति नहीं हो रही तो तुम अपने कछू करत रहो, जब हमारी क्षति होने लगेगी तब हम इशारा करेंगे कि सावधान, पहली बार वार्निंग देंगे, अटैक नहीं करेंगे, वार्निंग देते हम कि अभी भी संभल जाओ, फिर नहीं करते हैं तो फिर हम अटैक भी नहीं करते, फिर तो सिर्फ हम जो है और उनको पीछे हटाने के लिए और कोई प्रयत्न करते हैं, हम उनकी जमीन में जाकर के और उनका हड़पना चाहें वो कहलाएगा कि अटैक, आपने आक्रमण करके और हमारा छीन लिया। नहीं, आपने हमारा छीना था, हमने आपको पीछे हटा के अपना फिर से अपने कब्जे में ले लिया, बस ये प्रक्रिया है। ऐसा सैनिक करते हैं और भी उसमें हजारों सैनिक भी मर जाते हैं, तब भी पांचवें गुणस्थान में चामुंड राय को समझने के लिए जैनों को भी बहुत अध्ययन करना पड़ेगा। हाँ, किसी पुष्पराज करके जनसत्ता के पे किसी ने एक लिखा था कि जैनों की, हाँ कोई बहुत बड़े राइटर हैं, उनने लिखा था कि जैनों की हिंसा समझने के लिए जैनों को भी अभी अध्ययन करना पड़ेगा, बाकी की समझ में भी नहीं आने वाली। जैनों की हिंसा और अहिंसा का कॉन्सेप्ट बहुत माने बहुत सूक्ष्म है। कृपया बताइएगा कि अष्टमी चतुर्दशी का क्या महत्व है? अष्टमी आठ कर्मों के नाश करने के लिए, चतुर्दशी चौदह गुण स्थान पाने के लिए, और क्या? ये सीधा सीधा ऐसा, आप ये शाश्वत पर्व कहलाते हैं, अनादिकाल से चले आ रहे हैं, ये ओकेजनल नहीं है, मतलब किसी वजह से नहीं है, ये हमेशा से है, निसर्ग से है, स्वभाव से ही है ये पर्व। और इनके पीछे कोई साइंस वाइंस देखना चाहो तो साइंस भी देख सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा की कलाएं खुलने और बंद होने से ही अष्टमी और चतुर्दशी का संबंध है, और चंद्रमा का पानी पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है, हमारे भीतर भी 72% तो नॉर्मल कोर्स में वाटर होता ही है, अब उसके अलावा भी हम और अधिक पानी पियेंगे तो चंद्रमा का असर हम पे ज़्यादा होगा। आने वाले पूर्णिमा और अमावस्या के दिन चंद्रमा के असर हमारे ऊपर बहुत अधिक होते हैं, अमेरिका में जितने सुसाइडल केस हुए हैं वे सब अमावस्या के दिन हुए हैं, ये उनका रिसर्च वर्क है। तो डिप्रेशन होता है या कि पूर्णिमा को होते हैं एक्साइटमेंट होता है, उन दोनों से बचने के लिए हमारे आचार्यों ने 14 को पहले ही व्रत नियम संयम से उसको बांध दिया कि आने वाले दिन हम संयमित रहेंगे तो हमारे ऊपर उसके इफेक्ट कम होंगे। और देखिएगा अष्टमी में 7 दिन निकल गए हैं, 7 बाकी हैं, बीच का दिन है, तो अपने आप बैलेंसिंग डे है, हम उसमें आसानी से और व्रत नियम कर सकते हैं। इसलिए शायद अष्टमी रखा हो और 14 और भी कोई कारण हो, भैया मुझे इतना ही मालूम है, आचार्यों ने तो ऐसा नहीं लिखा, मैं अपनी छोटी सी बुद्धि से सोचता हूं कि ऐसा भी कारण हो सकता है, जो भी हो, पर यह शाश्वत पर्व है। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या, इसका अर्थ भी अपन लोग सामान्य रूप से क्या निकालते हैं कि स्वार्थ त्याग करके और कठिन तपस्या करते हैं, ऐसा बना लेते हैं अर्थ, लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा अर्थ नहीं है, इतना छोटा सा अर्थ मेरी भावना का नहीं है। तो मैंने इस बार एक मेरी भावना उसमें ऐसे ही पब्लिश की है, लोगों ने उसमें अर्थ भी दे दिया है, जैसे इति भीति, अब इति के मायने नहीं पता लोगों को, इति के मायने होता संकट, ऐसा संकट जिसमें कि प्राण चले जाएं, जैसे अतिवृष्टि हो गई, अनावृष्टि हो गई, जैसे कि प्लेग फैल गई, जैसे कि महामारी फैल गई, जैसे कि टिड्डी दल ने आकर के सारी फसल चौपट कर दी, ये सब इति कहलाती, ये बहुत बड़ी विपत्तियां हैं, जैसे कि भूकंप आएगा, जैसे वॉल्केनिक एक्टिविटी हो जाए, ज्वालामुखी फट गया, ये सब क्या है, ये सब इति कहलाती संकट, तब ये अर्थ नहीं मालूम। इसी तरह इसका भी अर्थ है स्वार्थ त्याग। स्वार्थ दो अर्थ में होता है, एक तो स्वार्थ वो होता है जिसमें कि हम दूसरे का ध्यान नहीं रख के सिर्फ अपने सुख का ध्यान रखते हैं, उसको अपन कहते बड़े स्वार्थी हैं, मीनली जिसको अपन कहते, सेल्फिश नहीं, सेल्फिश शब्द अच्छे अर्थों में है इंग्लिश का, लेकिन अपन ने उसको भी गलत अर्थों में बना लिया है, मीनली कहलाता है, इनको अपने ही चिंता है बाकी कोई मरे तो मर जाए, वो कहलाता है स्वार्थी। और एक स्वार्थ के मायने होता स्व मतलब आत्मा, आत्मा ही जिसका प्रयोजन है, आत्म कल्याण जिसका प्रयोजन है, वो भी स्वार्थी कहलाता, ये बहुत अलग मायने हैं। तो इसमें यही अर्थ है, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या, बिना खेद जो करते हैं अपने आत्मा के हित के लिए, जो अपना सर्वस्व त्याग कर और कठिन तपस्या करने में लगे हैं वे साधु। इन पंक्तियों का अर्थ ऐसा है, सामान्य लोग इसका अर्थ ये ले लेते हैं कि स्वार्थ को त्याग कर जो कठिन तपस्या करते हैं, इतना ही नहीं है, स्वार्थ मतलब अपने आत्मा का हित और त्याग मतलब अपना सर्वस्व छोड़ दिया, परिग्रह का पूरा त्याग कर दिया, तो अपने आत्महित के लिए जो परिग्रह या का पूरा सर्वस्व त्याग करके और कठिन तपस्या बिना खेद के करते हैं, ऐसे साधु ज्ञानी वो हमारे जीवन को अच्छा बनाने में मदद करें, उनकी संगति रहे, ऐसा कुछ उसमें आता मेरी भावना। इति भीति उसके बाद आई गया, देखिए मैंने पहले बता दिया, तीसरे नंबर लिखा है, इति के मायने संकट होता और भीति के मायने भय, इति भी 7 प्रकार की होती, भीति भी 7 प्रकार की होती, संकट भी 7 प्रकार का है, मैंने आपको गिना दिया, और भीति जो है भय को कहते हैं, ई लोक भय, परलोक भय, आकस्मिक भय, अत्राण भय, अगुप्ती भय, मरण का भय और वेदना का भय, इस तरह के ये 7 भय होते हैं। जांचें सुरतरु देय सुख चिंतत चिंता रेण, जांचे का मतलब है टू चेक नहीं है, मतलब जांचना, जांचना का मतलब कॉपी जांचना, चेक करना, ऐसा नहीं है, याचे शब्द से जांचे बन गया है, हाँ याचना करना, जैसे अपन जोवन, जो जोवन की चपलाई, वहां पर जोवन मतलब यौवन, ऐसे यहां पर है कि जांचे सुरतरु, जो कल्प वृक्ष है उससे याचना करने पर कोई चीज मिलती है, जांचे सुरतरु देय सुख, चिंतत चिंता रहत, मन में चिंतन करने से चिंतामणि रत्न हमें कुछ देता है, लेकिन बिन जांचे बिन चिंत ये धर्म सकल सुख देन, लेकिन बिना किसी याचना के और बिना किसी मन में विकल्प के और धर्म हमें सारी सुख दे देता है, ऐसा उसका अर्थ लगा लीजिएगा। अच्छे प्रश्न पूछे आपने, और भी रह गए क्या छोटे छोटे प्रश्न? आपने अभी अभी कहा कि बोतल से पानी पीने वाले को किस श्रेणी में लाया जाता है, पर अगर कोई बच्चा स्कूल की बोतल में पानी लेके जाता तो क्या उसे भी उसी श्रेणी में रखा जाएगा? रखना तो चाहिए, आपने उसको स्कूल में बोतल, हमको स्कूल में बोतल ले जाना तो नहीं सिखाया था, हमने भी पढ़ा स्कूल में, और इतने उतने बुद्धू इतने गंवार तो नहीं हमारे ख्याल से, हम नहीं, आपको लगते हो तो हो भी सकता भाई, पर हमने तो नहीं पिया बॉटल में, ना हमारी मम्मी ने, हमारे पिता ने हमको बॉटल साथ में रखी हो, ये तो नहीं किया। और अगर बॉटल रखी भी है साथ में, तो उसमें जिन बच्चों के बड़े बच्चे थे जो उनके बॉटल भी साथ में जाती तो उसमें एक ग्लास रहता था और सिखा दिया जाता था कि इस ग्लास में भर करके और फिर बॉटल से उससे पी लेना, ग्लास से। बॉटल मुंह में लगा करके नहीं सिखाया था। और उस समय फ्रिज भी चलता था, तो फ्रिज में भी बॉटल रखी जाती थी ठंडा करने के लिए पानी, पर उसमें से एक बॉटल निकाल करके सीधी बॉटल से नहीं पी जा सकता, नहीं ऐसे गटगट गटगट किया जाता, गिलास में निकाल के फिर पिया जाता था शालीनता से बैठ करके। हमारे ख्याल से तो उस समय इनको ऐसे लोगों को गंवार नहीं माना जाता था, अच्छे ही माना जाता था, अच्छे प्यारे भले लोग हैं जो ऐसे नहीं पी रहे हैं, झूठा कर दिया उसको, चाहे इतनी दूर से भी डालो पानी, बात तो वही हुई। अब बदल गई स्थिति, अब तो सीधी सीधी मुंह में लगा करके पी लेते हैं। तो भैया बच्चों को भी जो है आप ऐसा नहीं सिखाइएगा, और ना मैं उसकी वकालत करूंगा, मतलब ना मैं उसका समर्थन करूंगा कि बच्चों को, चूंकि अब क्या करें बच्चे बॉटल लेके जाते हैं, उनको सिखाइएगा कि साथ में उसके अंदर बॉटल ऐसी खरीद के दो जिसमें कि ग्लास उसके अंदर फंसा रहता, कई आती ही बॉटल, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं मालूम, आती हैं उसमें, उसमें ढक्कन चूड़ी से कसा रहता उसी को खोल करके उसमें, आपने सिखाई नहीं उनको, तो सीधा मुंह से लगाना सिखा दिया इतने छोटे छोटे 2.5 साल के बच्चे को, कैसा लगता है आपको, अच्छा लगता है? सिर्फ शराब पीने वाला बॉटल मुंह से लगाता है और तो कोई नहीं लगाता। अब वो भी शायद, वो लोग भी पैग वैग बनाते हैं तो वो भी ऐसे सीधी नहीं लगाते हैं मेरे ख्याल से। नहीं मतलब आप क्या सोच रहे थे कि हमें मालूम नहीं है? इसका मायना ये नहीं है कि मुझे अनुभव है, दूसरों के अनुभव से भी बहुत सी चीजें सीखी जाती हैं। किसी को विष खाते देखकर मरते देख करके हम क्या कहते हैं कि हमारा अनुभव है, हमने विष खा के मरते देखा है। खाया होता तो कहने की फुर्सत ही नहीं रहती आप। हम व्रत लेना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे परिवारजन कुल देवता को बहुत मानते हैं, उन्होंने उनसे पूछा कि हमारी बेटी जो कार्य करना चाहती उसमें सफल होगी कि नहीं, तो उन्होंने कहा कि वो सफल नहीं होगी। ठीक है, वो पहले हमारे साथ थे लेकिन अब हमें आगे बढ़ने से मना कर रहे हैं, ये भी ठीक है, लेकिन महाराज जी हम आरिका बनना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, इसमें क्या, आप ही बताइएगा कि हम क्या करें, ये बिल्कुल टेढ़ा मामला है, बाकी सब तो ठीक है, यहां तक तो आपने बहुत ठीक लिखा, इसके बाद जो है जरा मुश्किल का काम है। क्या हम कुदेव की बात मान करके और अपना मार्ग चेंज कर दें, या फिर कृपया मार्ग प्रशस्त करने की कृपा करिएगा। एक उदाहरण दे देता हूं, आपको समझ में आए तो समझ में आए, नहीं आए तो हम ज्यादा डिफाइन नहीं करेंगे इस चीज को। विदिशा में हम थे उस समय, तो विदिशा के पास किसी गांव में एक व्यक्ति रहते थे, तो वो हमारे पास आए कि नहीं महाराज ऐसा हुआ कि हमने एक खेत खरीदा, उस खेत में एक चबूतरा बना था। अब हमें मालूम नहीं था कि उस चबूतरे पर कोई मान्यता वान्यता है, तो हमने उस पर अगरबत्ती वगैरह नहीं लगाई, और जैसे ही हमने पंप चालू किया तो पंप बंद हो गया, हम फिर मोटर चालू करें वो फिर बंद हो जाए, हम बड़े परेशान। तो आसपास के जो खेत के लोग थे वो कहने लगे कि सुनो, ये जिनका खेत पहले था वो भी ऐसा करते थे, जब उनकी कोई ऐसी विपत्ति आती थी तो एक नदिया चढ़ाते थे और उस चबूतरे पर और एक अगरबत्ती लगा देते थे, तो सब मामला ठीक हो जाता था। अरे हमने कही जब रोज रोज की किलकिल, हमसे कहने लगे वे महाराज हमने सोची कि रोज रोज की किलकिल को पाले, कि अब इनके लाने जब हमारी मोटर बंद हो जाए एक नदिया चलाओ रही और अगरबत्ती लगाओ जो रोज रोज की किलकिल है। सो हमने कही भैया अब ऐसा करें हम, तो सो हम पहुंचे वो पे चबूतरा पे, और हमने कि सुनो भैया दो जने एक संगे नहीं रह सकत, क्या तो तुम रहो के हम, हाँ क्या तो तुम चले जाओ। कह ले मानो हमारी मोटर चालू नहीं भाई इतनी कहे के बाद, और हमें थोड़े अपने पांव भारी भारी से लगन लगे, तो हमने कहा ये तो उपद्रव वाला काम है। सो कह ले हमने फिर उठाई गेंती और फड़ुआ, सो खोद वो शुरू करो, और हमने कि सुनो ईंट से ईंट बजा दें। सो हम कह ले ईंट निकारत थे, दूसरी ईंट से मार के दो ही के बाहर फेंकत थी, और कह ले हम फेंकत रहे पसीने पसीने हो गए, हमने पूरा चबूतरा साफ कर दिया और उतनी जाके बैठ गए, और हमने नमोकार की एक जाप करी, हमने कि भैया आप हम ही रहे, अब तुम और कहूं अपनी जगह बना लो। कह ले थोड़ी देर के बाद हमारी पंप सब चालू होगा। महाराज का जो गलती तो नहीं करी हमने, हमने कि अब सब कर लो आपने, अब हम का बताए। अब जब आप ही ने सब कर लो हम क्या बताएं इसमें। एक बहू है अशोक नगर में आपके पास में ही, 3 साल तक उसको परेशान किया। उनके यहां भी यही स्थिति थी, बेटा भी पैदा नहीं होता था, ऊपर से पटक दी जाती थी। उसने कहा लेकिन मां था तो वीतरागी के अलावा किसी को नहीं झुकने वाला, चाहे मरण भी क्यों ना हो जाए। 2-3 साल तक उनने भी देखी, थक गए वे। फिर उन्होंने कही थी कि अब इनको इन पे हमारा बस नहीं चलता है, ये तो जिन पे बस चलता है उन पे ही उनका ही काम है ये, बाकी इन सब चीजों से बहुत ज्यादा प्रभावित होना नहीं चाहिए। इसके बाद आपके हाथ में है, जो भी आपको करना। मैंने तो अपने और कोई जवाब मेरे ख्याल से जवाब दे दिया मैंने ईमानदारी से, आप फिर उसके बाद जैसा करना चाहें। हम आखिरी में भजन बोलना चाहते हैं, लेकिन हमने सुबह का भजन सुना तो हमको उससे बहुत संतोष नहीं हुआ। कोई ने बोला था उसमें बहुत सारा, बहुत देर तक वो अपने को पसंद नहीं। हम नहीं, बुरा नहीं मानना, मैं जो भी होता वो सामने कह देता हूँ। थोड़ी देर को बुरा लगता, बात को तो अच्छा हो जाता। वो छोटी सी बिटिया थी, ठीक है, लेकिन जैसा संस्कार डालेंगे वैसा डल जाता है। मंच पर तो जैसा भैया जी ने गाया है वैसा गा सको, हमारे मंच से तो फिल्मी तर्ज में गाया गया गीत हम पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि पहले फिल्म की याद आती है और फिल्मी गीत की याद आती, बाद में भजन के बोल सुनाई पड़ते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होता। इसलिए हमें पुराने भजन तैयार करना चाहिए। और देखिए आज तो आपने 2-2 भजन सुने ही हैं, और आप चाहें तो रोज इनसे बैठ करके सुन सकते हैं कि ये भजन भी गाए जा सकते हैं। भूंदर दास के दयानत राय के हम लोग भूल ही गए, हम लोग तो पैरोडी बना लेते हैं, और पैरोडी बनाई एक ठो शब्द अलग करो और उसमें एक अपने नाव डालो और सुना दो ज्यों को त्यों। अच्छा, और वो अपने आप में ओरिजिनली भी अच्छा गाना हो तब भी फिर भी ठीक है, बड़े फूहड़ किस्म के गाने की पैरोडी बनाई जाती है तो वो शोभा नहीं देता भैया। इसलिए आप भजन बोलना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे पहले दिखा लें और बता दें कि कैसा वाला, नहीं तो अब मैंने सोच लिया है कि अपने मंच से कम ऐसे भजनों को महत्व नहीं देंगे जो इस तरह के हैं जिनमें पैरोडी बनाई गई। ये भाग और पुरुषार्थ वाला ड्यू है, इसको मैं कल शुरू से ही पहले कहूँगा। आपका समय भी हो गया, जो भी भजन सुनाना चाह रहे हैं उनको थोड़ा सा बुरा तो लगेगा, लेकिन मैं बुरा मानने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं आपके भले के लिए कह रहा हूँ। हो सकता है कि आप वैसे ही वाला अच्छा भजन सुनाना चाह रहे हो, लेकिन मैं पहले जब तक देख नहीं लूँ तब तक जो है आपको परमिशन नहीं दे पाऊंगा, इसलिए आप उसके लिए मुझे क्षमा करिएगा। हैं, जब मैं देख लूंगा तब फिर मैं आपका जरूर से भजन और सुनूंगा, उसके बिना नहीं। अभी तो मैत्री भाव कर लेते। मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे। मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे। दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत बहे। दीन दुखी जीवों पर मेरे स्रोत बहे, रहे भावना ऐसी मेरी सरल सत्य व्यवहार करूं। रहे भावना सरल सत्य व्यवहार करूं, बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। बने जहां तक इस जीवन में आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि जीव और स्वभाव में क्या अंतर है? भैया जीव तो आधार है और स्वभाव उसके आधारभूत गुण है। सच्चा जैन किसे कहते हैं? जो जिनेंद्र भगवान की उपासना करता है उसे जैन कहते हैं। और उपासना की पद्धतियां अलग अलग हैं, जिसको जिस तरह से उपासना करनी हो वो उस तरह से उपासना करता है। आप ये प्रश्न करेंगे कि एक जैन का क्या कर्तव्य है, उसका क्या दायित्व है, या उसका अपना गृहस्थ या श्रावक का धर्म क्या है, तो बिल्कुल अलग चीज़ हो जाएगी। अपने यहाँ पर जैन किसे कहते हैं, सच्चा जैन किसे कहते हैं, तो जिनेंद्र भगवान की उपासना करता है, वीतरागी की उपासना करता है, वही सच्चा जैन है। अब उसके अपना धर्म क्या है, उसके अपने कर्तव्य क्या हैं, तो एक जैनी का कर्तव्य यह है कि वो प्राणी मात्र से मैत्री रखे, वो गुणवानों को देख करके हर्षित हो, वो दीन दुखी पर करुणा भाव रखे, और जो दुर्जन है, कुमार्गगामी है, उनके प्रति साम्य भाव रखे। ये कर्तव्य है। अपन सोचते हैं कि देव पूजा, गुरुपास्ति, सास स्वाध्याय, संयम और त्याग, तप, ये सब उसके कर्तव्य हैं, ये उसका धर्म है। उसका कर्तव्य है कि वो इस तरह के चार भाव रखे। और देखा जाए तो चार या दो या छह ऐसे धर्म कहे गए, गृहस्थ धर्म या कि श्रावक धर्म। गृहस्थ और श्रावक में थोड़ा सा फर्क है। जिसके गृहस्थी है सामान्य रूप से वो गृहस्थ कहलाता है। अब उसमें जैन गृहस्थ भी हो सकता, वैष्णव गृहस्थ भी हो सकता, लेकिन श्रावक के मायने हैं कि जैन गृहस्थ और वो भी साथ में त्याग ग्रहण करने वाला। जो श्रद्धावान है, विवेकवान है और क्रियावान है, शुभ क्रिया करता है, पाप क्रियाओं को छोड़ देता है, वो कहलाता है श्रावक। तो गृहस्थ सामान्य है और श्रावक उसमें विभिन्न पांच पापों को छोड़ करके जो अनुव्रत ग्रहण करता है वो सब श्रावक की कोटि में आता है। तो इनके जो कर्तव्य तो हमने बता दिए, इनका धर्म क्या है, तो कहते दान पूजा शील उपवासो चौव्याणम साव्याणम धम्मो। श्रावकों के चार धर्म हैं, दान पूजा शील और उपवास, ये चार कहे गए हैं। और मुख्य रूप से अगर पूछते हैं तो कहते हैं दान पूजा, बस श्रावक का कल्याण इसी में है कि वो दान दे, पूजा करे, सब उसमें आ गया। दान पूजा में सारी चीजें आ जाएंगी। दान में संयम भी आ जाता है, तप भी आ जाता है, त्याग तो आता ही है, और पूजा में देव पूजा में गुरु की पूजा भी होती है, शास्त्र का स्वाध्याय भी होता है। हाँ, देव पूजा में शास्त्र का स्वाध्याय हो जाता है। क्यों, उन क्षणों में हम क्या विचार करते हैं कि मेरे राग द्वेष हैं और भगवान राग द्वेष से रहित हो गए, ऐसा हम आत्मावलोकन करते हैं पूजा के क्षणों में। सिद्ध भगवान के गुणों का स्मरण करते हैं, अरहंत भगवान के गुणों का स्मरण करते हैं, आचार्य उपाध्याय और साधु के गुणों का, वो एक स्वाध्याय है, इसलिए पूजा को स्वाध्याय कहा गया। इस तरह देखें तो देव पूजा, गुरुपास्ति, सास स्वाध्याय, ये सब देव पूजा में आ गए। और दान में संयम, देखो जो व्यक्ति दान देगा उसको संयम तो रखना ही पड़ेगा, और पूरा पूरा दान दे दे अगर तो वो उसका उसकी तपस्या है और त्याग तो है ही। इस तरह से ये पाइनएप्पल एसेंस वगैरह हैं, और भी एसेंस हैं, उनमें क्या दोष है? एसेंस सब आर्टिफिशियल बनने लगे हैं। ओरिजिनल जो एसेंस बनते थे कन्नौज में, उनसे मेरी बात हुई, अभी उन्होंने लेटेस्ट जो है, दो तीन साल पहले, लेटेस्ट ही कहना चाहिए, उन्होंने अभी 3000 वैरायटी विभिन्न एसेंस बनाने वाले पौधों की डेवलप की हैं, और वो उसको प्लांटेशन कर रहे हैं। और एक समय आएगा जब कभी कि हम पौधों से एक्सट्रैक्ट करके जो बिल्कुल प्योर है एसेंस वो बना पाएंगे, पर अभी जितने भी एसेंस है वो सब सिंथेटिक हैं, केमिकल से बन रहे हैं। और एसेंस की एक लिमिट तक तो वे एसेंस हमारा बिगाड़ नहीं करते, लेकिन उस लिमिट के बाहर होने पर वे बहुत अधिक खतरनाक हो जाते हैं, वे पॉइजनस हो जाते हैं। इसलिए जितने भी एसेंस हैं वो सब, अब उनकी क्वांटिटी
कितनी मात्रा में डालना चाहिए, कितनी मात्रा में सेवन करना चाहिए, ये तो आता पता नहीं रहता। चाहे जितनी मात्रा में सेवन करते हैं अपन, वो सब हार्मफुल हैं। अपने प्राणों का नाश करना भी हिंसा है। दूसरे के प्राण का नाश नहीं हुआ है, हालांकि उसमें केमिकल ही बनाए गए हैं, पर अपने प्राणों का घात हो रहा है, तो वो सब चीज़ें भी हिंसक नहीं मानी जाएंगी। ऐसा विचार कर लेना चाहिए अपने को। साबूदाना आ गया, इसको ज़रा बाद में कहूँगा। घर में भगवान की कांच, प्लास्टिक, धातु की मूर्ति रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, आपको जैसा करना हो। मैं तो सिर्फ एक वाक्य कहूँगा कि भगवान सो पीस नहीं है, वे हमारे घर की सजावट की वस्तु नहीं है, जिनको कि आप सजा करके अपने कमरे में रखें। वे सजावट की चीज़ नहीं है, वे प्रतिष्ठा करके और पूजने की हैं। रही बात फोटो इत्यादि की, तो वो तो सामान्य रूप से सभी लोग लगाते हैं, उनमें वीतरागता के दर्शन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, आदर करते हैं, ये चर्चा सुबह अपन कर चुके थे। जीव तत्व और जीव द्रव्य में अंतर क्या है? तो भैया, जीव तत्व तो हमारे अंदर जो जीवपना है उसको कहते हैं, और जीव द्रव्य अपने अपने गुण और पर्यायों से जो निरंतर परिणमन करता रहता है, यथा स्वम पर्याय ही है, ध्रुयंते द्रवंतिवा इति द्रव्यम है, तानि इति द्रव्याणि। हाँ, ये द्रव्य की परिभाषा है। तो देखा जाए, अब नहीं समझ में आया हो तो ऐसा समझ लो कि देखो, गिनो कितने लोग हैं, इतने सारे, ये सब जीव द्रव्य हैं अलग अलग, लेकिन इन सब के भीतर जीवपना कॉमन है, वो जीव तत्व हो गया। हम सबके भीतर जो जीवपना है कॉमन, वो जीव तत्व है, और हम सब लोग जो इंडिविजुअल अपने अपने गुण और पर्याय से परिणमन कर रहे हैं, वो हमारा द्रव्यपना है। तो हम जीव द्रव्य भी हैं और हम जीव तत्व भी हैं, और हम जीव पदार्थ भी हैं, क्योंकि हम जानने में आते हैं। जो जो जानने में आता है उसे पदार्थ कहते हैं, पदेन अर्था पदार्था, जो ज्ञान का विषय बनता है। और हम अस्तिकाय भी हैं, क्योंकि जीव असंख्यात प्रदेशी होता है, बहुप्रदेशी जिसको कहते हैं वो अस्तिकाय कहलाता है। तो ऐसी सारी चीजें अपने भीतर ऐसे घटित कर सकते हैं। हम मंदिर जाते हैं तो मंदिर में ज्यादा देर तक मन नहीं लगता, कोई बात नहीं, मन इधर उधर भागता है, नहीं भागेगा क्या? वो मन तो घोड़ा है, और घोड़ा तो चपल और सजग वही शोभा देता है, अड़ियल घोड़ा शोभा नहीं देता। घोड़े की तो तासीर ये होनी चाहिए, मन को तो बहुत जो है बहुत सजग और बहुत कहना चाहिए अच्छा तेज तर्राट होना चाहिए। अपन सोचते हैं कि मन को स्थिर होना चाहिए, फोकट बात। हाँ, ये बन गया है एक पैटर्न कि बस मन को तो नहीं, मन को तो बहुत सजग और बहुत चपल, मन को तो बहुत तेज होना चाहिए। बस इतना जरूर है कि मन की दिशा निर्धारित करने का काम चेतना का है। चेतना उस मन की दिशा को, जैसे कि घोड़े की लगाम हमारे हाथ में रहती है, ऐसे ही मन की लगाम हमारे हाथ में रहे, और जैसे कि घोड़ा खड़े खड़े नींद ले लेता है, बैठता भी नहीं है, अड़ता भी नहीं है कहीं, ऐसे ही और बिल्कुल उसकी आंख जो है अपने लक्ष्य की तरफ रहती है, ऐसे ही जो है हमारे मन को भी हमें इतना ही मजबूत, इतना ही सशक्त और इतना ही एक निश्चित दिशा में निरंतर गति करने वाला बना लेना चाहिए। इतना ही काम करना है। पर अपन लोग जो है थोड़ी देर ही बैठ पाते हैं, आंख से आंसू निकलते हैं। आंख से आंसू निकलने पे मैं पहले कह चुका कि कोई बहुत बुरी बात नहीं है, आप वरीड क्यों हो रहे हैं? जिनकी आंख से आंसू नहीं निकलते उनको वरीड होना चाहिए। अभी पेपर में आ रहा है कि जो ठीक से रो नहीं पाते हैं वे हार्ट के मरीज हो जाते हैं, जो खूब रो लेते हैं अच्छे आराम से तो उनको हार्ट वर्ड खराब नहीं होता। अब वो दिन लद गए जब लोग कहते थे कि रोना नादानी है, अज्ञानता है, और ये तो जो है माँ लोगों का काम है। ये ध्यान रखिएगा, हम जितने संवेदनशील होंगे उतने ही अधिक दृढ़ भी होंगे। देख लो, अच्छा, कांच पिघल करके जितना बहने योग हो जाता है उतना ही जम करके मजबूत भी हो जाता है। ध्यान रखिएगा, जो जितना पिघल सकता है वो उतना स्टेबल भी हो सकता है। इसलिए रोना तो बहुत अच्छी चीज़ है। बस इतना ज़रूर है कि हम लोगों का हंसना और रोना दोनों ही जो है अब बहुत आर्टिफिशियल हो गए। हाँ, नेचुरल होना चाहिए, हमें बनावटी नहीं रोना चाहिए ना बनावटी हंसना चाहिए। हमारी हंसी भी जो सहज थी वो गायब हो गई है, अब हम बहुत सोच समझ करके रोते हैं। देखो तो सोच समझ के हंसने लगे, इतने समझदार हो गए, कहाँ रोना चाहिए कहाँ नहीं रोना चाहिए। नहीं भैया, जहाँ ये तो वीपिंग जो है वो एक इमोशन है, और मन को जब बहुत किसी चीज से मन भर जाता है तो जैसे फ्लड आता है और बहाव शुरू हो जाता है, इसी तरह से इसके साथ भी है। तो आपका मन देव दर्शन से बहुत प्रसन्न और प्रफुल्लित हुआ, इसीलिए तो आपको आंसू आ गए। इसमें कोई विशेष वो बात नहीं है, घबराने की है उसकी बात। तुम्हारा प्रश्न भागता है, उसको भागने दीजिएगा, बस उसको देखते रहिएगा कि कहाँ कहाँ जाता है। गंदी जगह जाता है वापिस लाओ, भली जगह जाता है लगाए रहो, चेंज करते रहो, और इस भली जगह, हाँ ये भी भली जगह है चलो लगे रहो यहाँ पर, इससे वापस जाना हो और दूसरी भली जगह चलो, बुरी जगह जाओगे, बुरी जगह जाओगे तो वापस लौटना पड़ेगा, बस इतना ही। जैसे कि माँ खाना बनाती है, अब तो नहीं बनाती वैसे, हाँ वैसा खाना कहाँ बनाती है, अब तो खड़े होकर बनाती है ठाट से। पहले बैठ करके माँ बनाती थी, चूल्हे पर बनाती थी, तो फिर अपन जब बचपन में छोटे रहते थे तो क्या करते, रोटी बनाते बनाते और हाथ पकड़ लेते कि हमारे साथ खेलो। आप अपने को तो खेल ही अच्छा लगता, चाहे माँ हो चाहे कोई भी हो, तो माँ हमारे साथ खेलो, अब माँ रोटी बनाए कि इनके साथ खेले, तो क्या करती वो फौरन उसमें से आटे में से गोल गोल एक गोली गोली बनाई, उधर फेंक दी, देख बाबू वो उधर, बाबू उधर जब तक गए तब तक इनने बेली और चढ़ा ली, अब फिर से आओगे जब तक डाइवर्ट, आप उधर से वापस आओगे फिर एंगेज कर देंगे हम कहीं ना कहीं। ऐसे ही मन के साथ, मन एक जगह नहीं रुकता है, दूसरी जगह जाना चाहता है, हम उसको वहां ले जाएंगे, लेकिन गलत जगह जाएगा तो हम उसको डायरेक्शन उसकी चेंज कर देंगे, बस इतना ही। मन को रोकना नहीं है, आचार्य महाराज कहते हैं मन को दिशा देना, इसी का नाम ध्यान है। इतना तो कर ही सकते हैं भैया आप। बाल कांत राय क्यों माना जाता है, बाल अगर जड़ से उखड़े तो उसके पीछे जो है स्किन लगी रहती है, इसलिए इसको अल्पमल माना है, उसमें मांस का दोष आ जाता है, इसलिए खाने पीने की सामग्री में बाल आ जाए तो उसको निकाल दिया जाता। अल्पमल होने की वजह से उसका कोई प्रायश्चित नहीं होता, बस इतना ही है कि वो चीज़ गृहस्थ है अगर तो वो चीज़ छोड़ देगा, उस दिन वो चीज़ नहीं खाएगा, रोटी में निकल आया है तो फिर बाकी रोटी भी नहीं खाएंगे, बाकी चीज़ खा लेंगे गृहस्थ के लिए, क्योंकि भरी हुई थाली छोड़ना ये सभ्यता नहीं माना जाता। या तो पहले ही आप तय कर लो कि इस पूरी थाली को एक बार शोधन करके फिर पूरी खा के फिर परसवाओ, हाँ अंतराय अगर पालन करना है तो। और मुनि महाराज और एलक छुल्लक के लिए एक ही ग्रास हाथ में है, ज़्यादा तो है नहीं, तो वो पूरा छोड़ देते हैं, उसके बाद फिर नहीं लेते हैं, इस तरह से बाल का अंतराय माना जाता है। ये क्या चीज़ है, जिंगर है, क्या लिखा भैया कि एंगर, क्या है ये इंग्लिश में, मुझे है जिंजर है, मतलब अदरक है, इनका जी तो लग रहा है ऐसा कि भगवान ही मालिक है, तो इसमें दोष माना जाता है। और हम बार बार यही सोच रहे थे ANIGER तो कोई शब्द ही नहीं होता, भैया थोड़ा जी ठीक तो लिखा करे, उसकी घुंडी नीचे तक ले जाओ, जब आप छोटे वाले जी की नीचे तक ले जाते थोड़े बड़े वाले जी की भी नीचे ले जाके लाओ, बड़ा अच्छा है, वहीं कहीं मोड़ देते हैं आप। और फिर सूखने के बाद सौंठ में कोई दोष नहीं आता है, ऐसा क्यों, गीली अवस्था में उस पर जीव राशि की संभावना मानी गई है, वो एक इंद्री जीव तो है ही, इतना जरूर है कि जमीकंद होने के बाद भी वो सूखने पर, हल्दी और अदरक दो चीज़ें ऐसी हैं जो सूखने पर, ड्राई हो जाने पर, वैसे बैक्टीरिया से रहित करने के 6 प्रोसीजर हैं, उसमें एक डिहाइड्रेशन भी प्रोसीजर है। मुझे आश्चर्य होता है कि हमारे अपने पुराने लोग कितनी चीज़ें जो कि ड्राई होने पर बैक्टीरिया से रहित होती हैं उनको सुखा के रखते हैं। आलू कितने ही सुखा के रख लो, हाँ आलू बैक्टीरिया से रहित नहीं होता, आलू में बहुत आसानी से बैक्टीरिया का कल्चर होता है, जरा सा मॉइस्चर वातावरण में कम से कम 10% 20% तो मॉइस्चर होता ही है। आप कितने ही डब्बा बंद करके आप जैसे ही बाहर निकालेंगे आलू की चिप्स एकदम जो है कल्चर करके और उसमें बैक्टीरिया ग्रो हो जाता है। इसलिए कृपा करके डिहाइड्रेशन की प्रक्रिया आलू की चिप्स में ठीक मत बनाइएगा। रही बात बाकी चीज़ों में जिसमें विशेष रूप से हल्दी और अदरक है, ये दोनों एंटीबायोटिक हैं, इनमें बैक्टीरिया ग्रो नहीं करता, इनके आसपास भी ग्रो नहीं करता। ये ज़रूर है कि ये स्वयं एक इंद्री हैं, इसलिए उनको जैसे हम और चीज़ों को पानी को प्रासुक कर लेते हैं ऐसे इनको सुखा करके और ये प्रासुक माने जाते हैं। तो फिर जमीकंद होने के बाद भी ज़मीन में बहुत अधिक नीचे नहीं जाते हैं और ये जब पक जाते हैं तब ऊपर का पौधा भी अपना लाइफ साइकिल पूरा कर चुकता है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। आलू मूली इत्यादि जो गाजर है उसमें पूरा पौधा 6 महीने तक जीवित रहता है। अगर पूरा पौधा 6 महीने तक जीवित रहे तो नीचे जो गाजर है या मूली है वो रूढ़ी हो जाएगी, खाने लायक नहीं रहेगी। इसलिए समय से पहले पूरे पौधे को नष्ट करके उसको निकाला जाता है, इसलिए वो जमीकंद हिंसात्मक है। लेकिन गाजर में ये जो आपके हल्दी और अदरक है ये दोनों मुश्किल से 3-4 इंच ऐसे छिछलते हैं जमीन के अंदर और उस 3-4 इंच तक चूँकि धूप तेजी से पड़े तो इतनी ह्यूमिडिटी नहीं रहती है कि इसमें बहुत जीवराशि उत्पन्न हो। वो जो 1 फीट नीचे तक मूली गड़ी हुई है उसकी अपेक्षा ये जमीकंद होने के बाद भी सेफ हैं। तो इन सब कारणों की वजह से त्यागी व्रति भी जो है हल्दी और सौंठ सूखे हुए इनका उपयोग करते हैं। गीली अवस्था में ये प्रासुक नहीं माने जाते हैं, इस वजह से वो प्रासुकीकरण की प्रक्रिया है। हमें किसी कारणवश कुदेवों को हाथ जोड़ना पड़ रहा है तो क्या हम उस मूर्ति में अपने भगवान का प्रतिबिंब देख करके नमन नहीं कर सकते, या हम सोच कर कि हमसे बड़े हैं इसलिए प्रणाम कर लिया, इसलिए आदर करने के लिए उनके आगे प्रणाम करने के लिए हमने हाथ जोड़ दिए और उनके प्रसाद को मिठाई समझकर या खाने की वस्तु समझकर खा लें, तो इस सब में पाप लगेगा नहीं लगेगा? काहे को लगेगा जब आप कर रहे हो तो? उन चीज़ों में नहीं लगा जो अपन को कर नहीं है, जो अपन को खाने हो में कछु दोष नहीं रह, जो अपनों नियम बना लो फर्स्ट क्लास, अपन को जा चीज़ खाने से दोष वोष नहीं देखने, जब खाने ही हैं तो ऐसे ही अपन को मान लो प्रणाम करने कोई खो भी तो फिर जा नहीं देखने भैया कि मैं दोष लग रहा हूँ कि नहीं लग रहा, अपने चुपचाप का पूछने हो मैं। हाँ, अगर आप अपने आप इस तरह तर्क दे के अपने को समझा रहे हो, कंसोलेशन कर रहे हो तो कर लो, हमें क्या करना। लेकिन भैया हम तो इतना ही जानते हैं कि बिना श्रद्धा के जहाँ कहीं भी माथा टेक देना कोई विशेष मायने नहीं रखता। जहाँ हमारी श्रद्धा होती है वहाँ सहज रूप से माथा टेक जाता है, उसमें किसी के कहने की या कुछ ज़्यादा सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है। वीतरागता के अलावा हम अन्य के लिए जय जिनेन तो कर सकते हैं लेकिन नमोस्तु नहीं कर सकते। माता पिता के पैर भी छू सकते हैं लेकिन उनको भगवान नहीं मान सकते। वे माता पिता हैं, माता पिता ही हैं, उनमें आदरणीयपना है, वंदनीयपना है, लेकिन उनको हम वीतरागता के समान मान करके और उसमें कल्पना कर ले में काय को कहीं और मंदिर में जाना है। रोज सवेरे से उठ करके माँ के ही अंदर जरा विचार करके उनको हाथ जोड़ लो, पैर पढ़ लो, ढोक दे दो कि ये माँ ही मेरे भगवान है, हो गया काम। अब जब आप इतनी तर्क लगा रहे हैं इसमें कि हम किसी कारणवश और जान भी रहे हैं कि ये वीतरागी नहीं है, रागी देशी हैं इसके बाद भी, और फिर हम कह रहे हैं कि उसमें प्रतिबिंब देख लें हम भगवान का, बताइएगा आश्चर्य है। अभी हम साक्षात वीतरागी भगवान में तो वीतरागता देख नहीं पा रहे और एक अनगढ़ पाषाण में वीतरागता देख लेंगे, बलिहारी है हमारी। अब हम और क्या कहें भैया, दो जगह हम कभी कंसीडर नहीं करते, हमारी आदत में है। आपको अच्छा लगे तो आप भी हमारी आदत जैसी आदत बना लीजिएगा। ये माथा हर जगह झुकाने के लिए नहीं मिला, जहाँ वीतरागता होगी वहाँ श्रद्धा से झुकेगा, बाकी जगह झुक तो सकता है लेकिन वीतरागता के लिए जैसा झुकता है वैसा नहीं झुक सकता। दूसरी बात है कि मैं, मेरा सगा भाई भी हो, एक ही थाली पर खाते हैं, जिस दिन वो मांस खाने लगेगा उस दिन कितना ही सगा हो मैं अपनी थाली अलग कर लूँगा। दो मामलों में, माथा झुकाने और खाने में, मैं कोई कंसीडरेशन नहीं करूँगा। ये मेरी अपनी च्वाइस है, ये मेरा अपना धर्म है। और आज ये दोनों भ्रष्ट होती चली जा रही हैं, चाहे जो खा लेते हैं और चाहे जहां माथा टेक देते हैं। जहां से हमारा मोक्ष मार्ग भी नहीं बनता वहां माथा टेक देते हैं, जहां से हमारा संसार पुष्ट होता है वहां माथा टेक देते हैं, जिससे हमारे जीवन का पतन होता है वो चीज़ खा लेते हैं हम। अब फिर आपको जैसा करना हो, इसलिए मैंने आंसर तो पहले ही दे दिया कि जहां सुहम माँ पनिबंध करे, मेरा कोई प्रतिबंध नहीं है। आपको जिसमें सुख मालूम पड़े वो करो, आपको संसार में सुख मालूम पड़ता है, मैं कौन होता हूँ जो आपको संसार से पार होने का कोई रास्ता बताऊँ। हाँ, आप अगर संसार से के दुखों से ऊब गए हैं और संसार से पार होना चाहते हैं तो जो जो रास्ता है उसी रास्ते से चलना पड़ेगा। मोक्ष के रास्ते से संसार में नहीं पहुंचा जा सकता, संसार के रास्ते से मोक्ष में नहीं पहुंचा जा सकता। रागी द्वेषी को भगवान मान करके पूजने से राग द्वेष तक ही पहुंचा जा सकता है, वीतरागी तक नहीं पहुंचा जा सकता। वीतरागी की पूजा उपासना से संसार का राग द्वेष बढ़ नहीं सकता, घट सकता है। अब आपको जैसा करना। हाँ, क्यों अपन क्या फिल्म या टीवी देखने में सातों व्यसन का दोष लगता है? क्योंकि फिल्म तो हम केवल अपने मनोरंजन के लिए देख रहे हैं, उसे देखकर अगर हम मन में कोई विकल्प ही ना लाएं, बहुत होशियार हैं, बहुत कंसोलेशन, कंसोलेशन कहलाता है ये, सांत्वना दे रहे हैं। हम इसको अपनी भाषा में कहते हैं कि जब बिल्कुल गिरन लगी सो झीकें लगा रहे, ये तर्क की झीकें कहा उठ, हाँ ये ऐसा कहलाता है। उसे देखकर मन में अगर कोई विकल्प ही ना आए, ऐसे अगर आप निर्विकल्पता को साधने वाले हो गए हो तो बहुत अच्छा भैया। फिर अब फिर तो हम भी कल से एक ठो मंगवा रहे हैं, सामने चलता रहेगा, अपने को क्या करना, अपने को कोई विकल्प ही नहीं करना, ऐसा है क्या? नहीं भैया, जो चीज रख रखी है उस चीज का विकल्प ना हो, जो चीज अपने हाथ से हमने शुरू की है उसका विकल्प ना हो, ये तो संभव ही नहीं है। बहुत रेयर कंडीशन में ऐसा होता है, होता है, संभव है, ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन बहुत दुष्कर है, बहुत कठिन है ऐसा हो पाना। क्यों अपने आप को धोखा दे रहे हैं आप? दुनिया को नहीं, अपने को तो धोखा देने से बचिएगा। इतने सशक्त नहीं है हम उपादान से कि हमारे ऊपर निमित्त का असर ना पड़े, बताइएगा? इतना उपादान हमारा सशक्त नहीं हुआ। ये बात मैं मानता हूं कि निमित्त का असर पड़े ही, ऐसा नियम नहीं है, लेकिन उपादान तो इतना सशक्त होना चाहिए कि कोई भी अच्छा भला बुरा निमित्त मिले और हम उसके बीच भी तटस्थ रहे आ सकें। ऐसे में तो क्या होगा कि दूसरा भी जो है आपसे सद जाता होगा, लेकिन हर एक से तो नहीं सदेगा। और अगर पिक्चर की स्टोरी शिक्षाप्रद हो तो भी पाप का बंद होगा क्या? फिर तो क्या हमें कोई शिक्षाप्रद नाटक वगैरह देखने भी पाप लगेगा क्या? आपने खुद ही प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करी है और खुद ही अपने तर्क दिए हैं, कोई बात नहीं।
महिला से सबूत या करवा,
हाँ वो मतलब मेरी सील लगवाना चाह रहे कि आप और कह दें तो ठीक। अब एक चीज मैं आपसे कहूँ, अपन को कोई ना कोई समाधान तो ढूंढना पड़ेगा, तो इसमें अपन इतना कर सकते हैं कि जिन चीजों के संपर्क में आने से हमारे परिणाम बिगड़ते हैं उन चीजों से हमें दूर रहना चाहिए। हाँ, जिन चीजों के संपर्क में आने से हमारे परिणाम नहीं बिगड़ते बल्कि और अच्छे बनते हैं, तो हमें उन चीज़ों को देखने में या उन चीज़ों के पढ़ने में या उन चीज़ों के संपर्क में आने में कोई दोष नहीं है। दोष नहीं है मतलब उससे हमारा कोई अहित नहीं है, पर कोशिश तो ये करनी चाहिए कि जितना बने जो देखो। तो देखिए वो बिसर गई बात, नगर जिसको देखने से हमारे परिणाम बिगड़ते हैं भैया, तो उस चीज से बचना चाहिए, इतना ही कहूंगा। पर ये आदत भी अच्छी नहीं है। जो व्यक्ति अपने आप में संतुष्ट है उसे बाहर अम्यूजमेंट और मनोरंजन के साधनों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जो जितना दुखी है भीतर से उसे बाहर मनोरंजन की उतनी ज्यादा आवश्यकता है। ये कहीं बात लिख करके रख लें, अभी छोटे हों अगर तो खूब बड़े होने पर जीवन के अनुभव से इस बात पर राइट लगाने का निशान मन हो तो राइट लगा दें, अभी तो आपको ये बात गलत ही मालूम पड़ेगी। जो जितना आत्म संतुष्ट है उसे बाहरी मनोरंजन उतना ही कम आवश्यक है, जो जितना भीतर से दुखी है वो उतना अधिक मनोरंजन के साधनों को इंटरटेन करने के लिए अपनाता है। ये एक वाक आपको दे रहा हूँ, अब आपको जैसा सोचना और सोच लीजिएगा। हमारे भगवान अपने आप में संतुष्ट हैं, उनने कोई टेलीविज़न नहीं लगा रखा। मुनि महाराज ने भी ऐसा कुछ भी नहीं, वे अपने आप में ठीक है, क्या करना है इन सब चीज़ों का। हाँ, ये बात अलग है कि सामान्य व्यक्ति है, उसका मन शुभ और अशुभ बाह्य वस्तुओं से प्रभावित होकर के शुभ और अशुभ रूप हो जाता है, तो उसको अशुभ वस्तुओं के संपर्क से बचना चाहिए और शुभ वस्तुओं के संपर्क में रहना चाहिए। इतना फर्क हो, पूजा करते समय मंदिर में महाराज आ जाएं तो पूजा छोड़कर मंदिर के अंदर चरण छूना चाहिए कि नहीं छूना चाहिए। भैया, इतनी कृपा तो आप करिएगा कि जब हम भगवान के दर्शन करने गए हैं तो कृपा करके हमारे दर्शन मत करिए। ये मैं क्या बताऊं, लेकिन चलता है, हम दर्शन करने सवेरे से जाते हैं, वहीं पर पूजा करने वाला खड़े हैं और लोग खड़े हैं, वे फौरन हमारे पैर छूने लगते हैं, हमको बड़ा अजीब लगता है वहाँ मंदिर के अंदर। तो हाँ महाराज, अगर मंदिर के अंदर भी दर्शन करके और स्वस्थ कहीं बैठ गए हों तो फिर उनके दर्शन करने जाना कोई हर्जा नहीं है, लेकिन वे स्वयं दर्शन कर रहे हैं उस दौरान भी लोग जो है पैर छूने लगते हैं, हम क्या कहें उनके लिए, उनकी अज्ञानता पर दया ही आती है, इससे ज़्यादा और क्या कह सकते हैं। फिर भी नहीं बंद करते हैं, इतनी अपन बात कर रहे हैं, अभी हम कहें कि दूर से ही छूना चाहिए, फिर भी जब हम यहाँ से उठेंगे तो सब आगे आगे आके पैर छूने दौड़ेंगे। एक माने अनकॉन्सियस में एक चीज जैसे कहीं डल गई है कि हम जानबूझ करके भी जो है उस चीज से बच नहीं पाते, इतनी गहरी है अज्ञानता कि जिस पर ज्ञान की बातों का कोई असर नहीं होता। हम अपना पैटर्न नहीं छोड़ते हैं, उसमें हमारा ईगो हर्ट करता है कि अरे वाह ऐसे कैसे सुन लिया हमने, ठीक है महाराज की बातें सुनने की रहती हैं, बड़ी प्यारी रहती हैं, सुनो बस, फॉलो वालो करना, वो तो जैसा अपना चल रहा वैसे ही चलेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं। वो तो मैंने बुंदेलखंड में कहने लगा कि भैया पंचायत बैठी थी कि भैया ये नर्दा को का करने हैं, सुबह कहने लगे कि पंच मंजूर है, पंचायत मंजूर है, नहीं रही नर्दा की सुबह होता ही सिंबे है, वो को हम नहीं बदल सका था। अब आप कह नहीं पड़ेगा ऐसे ही तो भी नहीं चेतेंगे कई लोग, ये अपने यहां लिखा हुआ है, मैं बता ही दूं आपको। मुनि महाराज कहीं आ रहे हों जा रहे हों, एक अंग का प्रणाम, क्यों हाथ में सामान लेके बाजार में जा रहे हैं और महाराज निकले तो क्या करेंगे, सामान नष्ट फेंक करके और लूट जाएंगे जमीन में क्या, नहीं, दोनों हाथ में सामान लिए हैं, एक अंग का प्रणाम, माथा टेक दिया, जहां खड़े हैं वहीं पर माथा झुका के खड़े हैं, जब तक सामने से नहीं निकल जाएंगे, हो गए आपका प्रणाम। हाँ, और अगर आपके हाथ खाली हैं और सिर में कोई तकलीफ है, दो अंग का प्रणाम, हाथ जोड़ के वहीं खड़े हैं, भगवान जब तक हमारे सामने से नहीं निकल जाएंगे तब तक मेरा प्रणाम। फिर तीन अंग का प्रणाम, माथा भी झुका दिया, बस इतना ही पर्याप्त, जहां खड़े वहीं के वहीं, कहीं नहीं जाना, अटेंशन में, जैसे कि राष्ट्रीय संगीत बजने लगता है तो वहीं के वहीं खड़े हो जाओ। महाराज दिख गए हैं, दूर से आते दिख गए हैं, खड़े हो गए, सावधान होकर के साइड से निकलेंगे तो उनको ऐसे प्रणाम करना बस, और अगर वे स्वस्थ बैठे हैं तब पंचांग नमस्कार या अष्टांग नमस्कार दोनों करना चाहिए, जब वे आराम से बैठे उस समय। ऐसे ही मंदिर में वे स्वयं दर्शन करने गए हैं और बाकी लोग स्वयं भी भगवान के दर्शन करने गए हैं, तो अच्छे से दर्शन करना चाहिए, जब वे दर्शन से फुर्सत हो जाएं तब उसके बाद हमें वेट करना चाहिए कि महाराज के दर्शन हो गए, अब हम महाराज के भी दर्शन कर लेते हैं। पूजा करने खड़े हैं, अगर आपको बहुत मन में आ गया कि महाराज आ गए हैं और अपन पूजा कर रहे हैं, अच्छा नहीं लगता, तो वहीं खड़े खड़े हाथ जोड़ लिए, पंच परमेष्ठी में शामिल हैं, सो हाथ जोड़ लिए, अपनी पूजा फिर कंटिन्यू। मन में विकल्प आ गया, अगर तो विकल्प आ गया तो अब पूजा में तो मन लगा नहीं, महाराज आ रहे हैं, वहां से मन हट गया, वहां महाराज की तरफ चला गया, तो वहीं वहीं प्रणाम कर लिया, अपनी पूजा फिर से शुरू कर दी। ज्ञान की बात तो ये है, और फिर जिसको जैसा करना वैसा। हाँ, फिर हम क्या कहें उसमें और ज्यादा, हम तो थक जाते हैं, कोई नहीं मानता है तो फिर उसको सलाह देने की इच्छा नहीं होती। अभी हम पढ़ रहे थे कि जिसको सलाह देने का नशा नहीं होता वो मानसिक रूप से समृद्ध है। हाँ, अगर आपको मानसिक विकास करना है तो कृपा करके सलाह देने के नशे से बचिएगा। हाँ, सब लोग सलाह देते हैं, हम आपको कोई सलाह नहीं दे रहे, आपने पूछा हमने बता दिया, आप मानना हो मानना, नहीं मानना नहीं। धर्म में कहा है कि किसी बुरे कार्य का भाव अकेले करने से ही पाप लग जाता, बिल्कुल ठीक बात है। जैसे हमें आलू खाने का भाव आ रहा है और अगर अष्टमी है और हमें आलू खाना ही नहीं है लेकिन इच्छा तीव्र हो गई, जैसे एक बार मन पर नियंत्रण रख लिया लेकिन फिर से आधे घंटे बाद मन में आ गया, ऐसे बार बार खराब भाव हो जाए तो इससे अच्छा है कि एक बार खा लेना चाहिए। ये कह रहे हैं, देखो कितनी मजे की बात, बहुत होशियार व्यक्ति है ये। अच्छा, और एक चीज और है, मैं अभी बताऊं आपको मजा, अभी बताता हूं। ये वही व्यक्ति है जिसने अभी दो प्रश्न पहले भी दिए थे, बड़ा लॉजिशियन है लगता है, सितंबर वॉर्न है, बहुत लॉजिशियन है। एक बार खा लेना चाहिए, क्योंकि जितना पाप हम भाव करके कर रहे हैं, बार बार भाव खराब होने से तो अच्छा है कि एक बार खा लेने में भी उतना ही पाप लगेगा। भाई साहब, इतने आसान गणित नहीं है जिंदगी के कि दो और दो जोड़ो तो चार ही होंगे। हाँ, गणित में दो और दो जोड़ने से चार होते हैं, यहां तो दो और दो जुड़ जाए अगर तो भारी उपद्रव खड़ा कर सकते हैं चार जने मिलके, इसलिए ये गणित नहीं लगेगा। अब इसको समझ लें अपन।